जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय नित्य गौर हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरांगा नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 नितय गौर प्रेमानंदे श्री श्री गौर नितय की श्री पंचतत्व की श्री मायापुर धाम की नवद्वीप धाम की गंगामाई की जमुनामाई की तुलसी देवी की भक्ति देवी की युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की निताई गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे With more devotion, please chant once more. Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare
Krishna, 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 Hare Hare,
Krishna, Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama,
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare.
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे
रामा
राम
राम हरे 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 कृष्णा हिंदी और इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश हिंदी हिंदी
Prajwasi in, you know, Mumbai for us, and he speaks ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ. साहब सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे आपके बीच में बुलाया. मेरे लिए वसई के भक्तों के बीच में आना एक बड़े सौभाग्य की बात है. आई कंसिडर इट एज माई ग्रेटेस्ट फॉर्चून टू बी अमॉन्ग वसई डिवोटीज. दिस इज माई हार्ट फेल्ट एक्सप्रेशन, नो एग्जैगरेशन, नो बटर पॉलिशिंग. सो हम लोग सब गौर पूर्णिमा के उत्सव में अभी भी शामिल है. गौर पूर्णिमा सीजन कह सकते हैं, गौर पूर्णिमा ऋतु. शुरू से कहता हूँ, जिनको नींद आती होगी तुरंत खड़े हो जाना है, ध्यान रखना, क्योंकि फिर वो गौरांग महाप्रभु की लीला है ना, वो ज़्यादा बार प्रकट नहीं होती है. देखो प्रपोर्शन क्या है गौर लीला का, भागवत कथा रोज होती है, गौर लीला तो शायद एक ही बार साल में होती होगी, है ना? आप विचार करो इस बात पर. तो गौर लीला रोज के नियम पे नहीं होती, कोई पढ़ेंगे तो ठीक है, कोई सुनेंगे तो ठीक है, लेकिन कथा कथन गौर लीला का शायद साल में एक ही बार होता है. इसलिए वो क्या है, दुर्लभ है, वेरी रेयर. इसलिए उसको बहुत सावधानी से, एकाग्रता से, हृदय से, प्रेम से, लगन से सुनना चाहिए. और बीच में अगर निद्रा की बाधा आती है तो खड़े होना चाहिए, क्योंकि गौर लीला जो है ना वो इस विश्व की सर्वोच्च लीला है. क्योंकि गौरांग महाप्रभु का जो पूरा पर्सनालिटी है, पूरा आविर्भाव है, पूरा इस विश्व में रहने का जो 48 इयर्स का उनका कालावधि है, वो ऐसे ऐसे घटनाओं से और ऐसे ऐसे दिव्य आध्यात्मिक विषयों से भरा हुआ है कि वो कहीं भी और किसी भी अवतार में दिखाई नहीं पड़ता है. ऐसा नहीं कि रामलीला नीचे है और महाभारत लीला उसके भी नीचे है और भागवत लीला अगर उसके ऊपर है, ऐसा नहीं है. सब लीला अपने अपने स्थान पर दिव्य है, लेकिन फिर भी गौर लीला का जो विषय है ना वही परमोच्च विषय है. प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं. श्रीमद् भागवतम में शरणागत भक्त जो है उनका वर्णन है, लेकिन चैतन्य चरितामृत में केवल जिनको प्रेम प्राप्त हुआ है उनका ही वर्णन है सर्वोच्च. श्रीमद् भागवत को अमलम पुराणम कहा गया है, क्योंकि उसमें कोई रजोगुण तमोगुण का लवलेश नहीं है, सत्वगुण का भी लवलेश नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई ज्ञान कांड नहीं, उपासना कांड नहीं है, कोई सिद्धि कांड नहीं है उसके अंदर, केवल भक्ति का वर्णन है. और वो ऐसे प्रेम प्राप्त किए हुए भक्तों का जो चरित्र है वो चैतन्य चरितामृत में आता है, स्वयं भगवान के भी चरित्र के साथ. इसलिए शुरुआत से लेकर प्रेम ही प्रेम है उसके अंदर, और कुछ नहीं. और इसलिए वो छंद भी है. कल में कथा करते करते मेरे मन में ऐसा एक विचार आया कि जैसे चैतन्य चरिता चैतन्य भगवान महाप्रभु भगवान से छंद अवतार है ना वो, तो चैतन्य चरितार में भी छंद शास्त्र है. ऐसा मुझे कथा करते करते एक अनुभूति हुई. क्यों? क्योंकि वो भी कितने लोगों को प्राप्त है, कितने लोगों तक पहुंच चुका है, वो केवल भक्त ही उसको पढ़ सकते. आप किसी को देंगे भी वो उनको समझ में आएगा नहीं, क्या है ये, है ना? आप सोचो इसके बारे में. श्रीमद् भागवत सब जगह प्रख्यात है, सब जगह सप्ताह होते रहते हैं, बड़े बड़े आचार्य बोलते रहते हैं उनके ऊपर, कितनी कथाओं का बोर्ड लगता है वृंदावन में, अनंत कथाओं. लेकिन गौर लीला जो है ना वो छंद है, जैसे महाप्रभु छंद है. क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने भक्त अवतार लेना ही एक छंद बात है कि अरे भगवान कैसे भक्त बन सकते हैं, लेकिन भगवान बने हैं. और भक्त बनने के बाद भगवान क्या कर रहे हैं वो इतना अद्भुत है ना, वो समझना ही मुश्किल है. इसलिए ऐसा नहीं कि चैतन्य चरितामृत कहीं किताब दुकान में मिलता नहीं है, सब जगह मिलता है, लेकिन फिर भी छंद है, वो छुपा हुआ है. और हमारा ये परम भाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु के स्वयं की कृपा से, फिर हमारे छह गोस्वामी की कृपा से, फिर हमारे संप्रदाय के आचार्यों की कृपा से और श्रील प्रभुपाद जी की परम कृपा से वो हमको ऐसे सहजता से प्राप्त हो गया है। पूरे रहस्य के वर्णन के साथ, रहस्य की क्या कहते हैं उसको, एक्सप्लेनेशन के साथ, केवल स्टोरी नहीं है, पूरे सिद्धांत के साथ, पूरे सार के साथ प्राप्त हुआ है। इसीलिए इस दुर्लभ गौर कथा का जब भी श्रवण करने का मौका आता है तो बड़े ही हृदय से सुनना चाहिए उसको, क्योंकि साक्षात प्रेम को देने वाला ये। गौर धाम में जब गंगा जी प्रवेश करती है तो वो न केवल पाप को नष्ट करती है, पुण्य को भी नष्ट कर देती है, और न केवल पुण्य को नष्ट करती है, श्री कृष्ण प्रेम को देती है। मायापुर की गंगा का स्मरण करने मात्र से ही प्रेम प्राप्ति होती है, मायापुर की गंगा का दर्शन करने मात्र से ही प्रेम प्राप्त होता है, मायापुर के भूमि का भी स्मरण एवं दर्शन एवं स्पर्श करने मात्र से ही प्रेम प्राप्ति होती है। श्री गौरांग और नित्यानंद प्रभु का नाम लेने मात्र से ही कृष्ण प्रेम हमारे पीछे पीछे भागता है। कितनी कृपा है, हाँ कितनी कृपा है, उसका कोई अंदाज नहीं लगा सकते हम। वी कैनॉट फाइंड आउट द लिमिट्स एंड द डेप्थ ऑफ द मर्सी ऑफ द ओशन ऑफ कंपैशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और ये कृपा इस प्रकार की है कि ऐसी कृपा आज तक किसी ने दिखाई नहीं। ए भव सागोरे ए मौन दयाल ना देखिया एक जान। पूरे भाव सागर में, पूरे निर्माण में भगवान ने जितना निर्माण किया ना, वो सारा निर्माण उसको सृजन कहते हैं, सृजन क्रिएशन। उसमें वासुदेव घोष कहते हैं कि ऐसा एक भी व्यक्ति मैंने देखा नहीं है तो इतना दयालु हो। ए भव सागोरे ए मौन दयाल, इतना दयालु कोई नहीं है, क्योंकि पशु पक्षियों पर कृपा किया है, जानवरों पर कृपा किया है, कुत्ते के पिल्ले पर कृपा किया है, सबसे अधम पापियों पर कृपा किया है। और कृपा का मतलब क्या होता है उनके, इनकी कृपा का मतलब ऐसा है कि ऑन द स्पॉट पाप पुण्य निवृत्ति और ऑन द स्पॉट प्रेम प्राप्ति। ऐसा नहीं कि आज पाप निवृत्ति कर दिया, स्लेट क्लीन कर दिया, अभी जाओ अभी जप करो, अधो श्रद्धा साधु संग तथा भजन क्रिया, ऐसे कदम कदम उठा के आगे चलो फिर धीरे धीरे पहुंचोगे, फिर शायद कई जन्म लग सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऑन द स्पॉट गले लगाया, ऑन द स्पॉट पाप पुण्य नष्ट कर दिया, ऑन द स्पॉट अश्रु बह रहे हैं, प्रेम के अश्रु, कंठ गदगद हो रहा है, रोमांच खड़े हो रहे हैं, ये केवल कृपा से प्राप्त हो सकता है। साधना कर से, साधना ऐसी कोई नहीं जिससे वो एक दिन एक साथ सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, तो कृपा है पूरी। तो ऐसे कृपालु, परम कृपालु श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव महोत्सव मना रहे हैं। इसलिए ना ये भूमिका तैयार करना बहुत जरूरी है, हम लोग उत्सव मनाते भी है ना, तो उत्सव मनाने वालों को जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है या जो आने वाले हैं, उसके पहले ऑर्गेनाइजिंग कमिटी का ऐसा भाव होना चाहिए कि हम लोग किस चीज़ का उत्सव मनाने जा रहे हैं, क्या लोगों को देना चाहते हैं और क्या लोगों को आज दे सकते हैं। वो परम कृपा जो है ना चैतन्य महाप्रभु की, वो 1000 कलयुग के बाद में आती है, 9999 कलयुग के बाद में जो 1000वां कलयुग आता है उसके अंदर वो आते हैं। कितना दुर्लभ है, और हम लोग कितने भाग्यशाली है कि हम उसी कलयुग में 1000 नंबर वाले कलयुग में हमारा जन्म हुआ है। और अगर आप इटर्निटी यानी जो शाश्वत काल में देखेंगे ना मुड़कर, तो पता चलेगा कि लाखों करोड़ों साल के बाद में ये समय आता है। इसलिए हम कहते हैं ना, प्रभुपाद जी बोलते थे केवल 550-550 साल पहले, केवल केवल क्यों बोलते हैं, तो करोड़ों साल के बाद में इनका आविर्भाव होता है, और कुछ सालों में वो प्रेम लीला प्रकट करते हैं, फिर अंतर्धान हो जाते हैं। और जितने भी जीव हैं उसमें से जितने राक्षसी प्रवृत्ति के जीव हैं उन सबका भगवान अपने अपने पुराने अवतार में वध कर देते हैं, ये तो छोड़ते नहीं है, मार ही देते हैं पूरा। हाँ, ऐसा ऐसा नहीं कि तमाचा मार दिया, एक मुक्का मार दिया, गिरा दिया, फिर चले गए, ऐसा नहीं, खत्म ही कर देते हैं। वो भगवान इस अवतार में वैसे ही लोग या तो उससे अधिक पापी लोग मिलते हैं, लेकिन उनके पाप की प्रवृत्ति को नाश करते हैं और उनको शुद्ध भक्त बना देते हैं। ये कभी हुआ है क्या आज तक कि रावण शुद्ध भक्त बनकर लौट के आया, बोल सरेंडर हो गया? सुना है आपने कभी? हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु एकदम प्योर डिवोटी बन गए और आ गए चरणों में भगवान के, बोला अभी शरण ले लो, प्रेम भक्ति दो, ऐसा कभी हुआ है? लेकिन ये इस अवतार का विशेषता है, किसी का वध नहीं किया, कोई शस्त्र लेके नहीं आए, और सबका अंदर का नाश, पापी प्रवृत्ति का नाश करके सबके हृदय में परमोच्च प्रेम जो है ना वो स्थापित कर दिया, और अपने धाम का जो सार है वो एक कैप्सूल में डालकर लेके आए। इधर लेने के लिए इजी होता है ना, पाउडर ला के देंगे तो पूरा मुश्किल होता है खाने के लिए, तो शुगर कोटेड टैबलेट होता है ना, तो डालने के लिए भी आसान, पीने के लिए भी आसान, कितना भी तकलीफ वाला पेशेंट हो तो भी आसान। ऐसा गौलोक का सार जो है, जो प्राप्त करने के लिए कई जन्मों तक तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, वो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में सारा जो सार है गौलोक धाम का डालकर उसके अंदर हमको प्रस्तुत किया। और जो द्वापर युग में केवल परमोच्च प्रेम प्राप्त किए हुए गोपियों को ही प्राप्त था, वो रासलीला उन्होंने इस महामंत्र के माध्यम से हम सबको प्रस्तुत किया, उस रासलीला वाले आनंद में हम सबको प्रवेश दिया उन्होंने। ये तो क्या कहते हैं ना, अनाकलनीय, इनकंसीवेबल, समझ भी नहीं आता ऐसा कैसा हो सकता है, हाउ दिस इज पॉसिबल। वो सब देवता लोग कोशिश कर रहे हैं, लक्ष्मी जी कोशिश कर रही है, हाँ ब्रह्मा जी कोशिश कर रहे हैं, शिव जी कोशिश कर रहे हैं, सभी देव ऋषि कोशिश कर रहे हैं रास में प्रवेश करने की, गेट के बाहर खड़ा करते हैं उनको। अभी भी लक्ष्मी देवी जो भगवान की ऐश्वर्य पत्नी है, वैकुंठ वाली, अभी भी तपस्या कर रही है, प्रवेश नहीं है, बोलते गाय का गोबर निकालना पड़ेगा, दूध निकालना पड़ेगा, गौशाला साफ करनी पड़ेगी, कंडे बनाना पड़ेगा, दही मंथन करना पड़ेगा। हाँ, याद है ना यशोदा वाला डांस, ये सब करना पड़ेगा बोलते हैं, उसके बाद में आपको नम्र भाव होगा ना, ऐसा सखी भाव, दास दासानुभाव होगा ना, तभी अंदर मिलेगा प्रवेश। तो लक्ष्मी को भी जहाँ प्रवेश नहीं है, ऐसे अद्भुत स्थान पर जहाँ परमोच्च आनंद का प्रवाह हो रहा है, ऐसे स्थान पर उन्होंने हम और आप ऐसे लोगों को प्रवेश दिया है, वो हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से, क्योंकि हरि नाम संकीर्तन में जो आनंद होता है वो रासलीला के आनंद से अलग नहीं है। उसका नियम क्या है कि आपको बड़े उत्साह से बीच में नाचना पड़ेगा, नाचना है तो भगवान के लिए नाचना होगा, मैं कितना सुंदर डांस कर रहा हूँ और कितनी लड़कियाँ मुझे देख रही हैं, ये भाव से नहीं, वो अंग जो हिलाएंगे वो केवल उनके लिए हिलाना है, जो भी ताल सुर जो भी है वो उनके लिए समर्पित होना चाहिए। नृत्य करते हुए भी मुख से हरिनाम प्रेम से पुकारते हुए लेते रहना चाहिए, और सब कुछ सर्वस्व हमारा उसमें अर्पण करना चाहिए, तन मन हृदय के साथ, चित्त और बुद्धि के साथ, एकाग्रता के साथ, कोई अन्य विचार न करते हुए। ऐसा जब भाग लेंगे ना हरिनाम संकीर्तन में, तो आपको जो अनुभव होगा वो रासलीला में जो गोपियों को अनुभव मिला था वो मिलेगा आपको, ये वास्तव है, ये हकीकत है। तो इतनी बड़ी कृपा श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं, मतलब ये कृपा का ना कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि क्यों ऐसा कर रहे हो। जितने हम पतित हो जाते हैं उतने उनकी कृपा जो है ना वो बढ़ती जाती है, इसलिए इस उत्सव को बड़े सावधानी से मनाना चाहिए, धन्यवाद की भावना से, हाँ, ग्रैटिट्यूड के साथ, कृतज्ञता के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे कलयुग में से अनंत लोगों में से कुछ गिने चुने लोग हैं जो गौरांग महाप्रभु को जानते हैं, गौरांग महाप्रभु का महामंत्र ले चुके हैं, गौरांग महाप्रभु के ही संप्रदाय में हम लोग अटैच्ड हैं, गौरांग महाप्रभु का सिद्धांत बड़ी आसान करके किसी महान आचार्य ने हमको हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया है। ये तो ये बातें कौन समझता है, अचिंत भेदाभेद तत्व, हाँ, 664 तत्व भक्ति के, हाँ, 6 भक्ति के गुण, इतने बड़ी बड़ी बातें किसके समझ में आएगा। देखो सारा कुछ समझा बुझा के दे दिया है हमको आसान करके, इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। और जो लोग अपने आप को भाग्यवान समझते हैं, उन भाग्य को दूसरों को बांटने का भी उनका कर्तव्य अपने आप बन जाता है। पहला भाव भाग्यवान समझने का है, कृतज्ञ होकर, और कृतज्ञ होकर भाग्यवान समझने के बाद उसको तुरंत सबको बांटना शुरू करना चाहिए। इसलिए खुद को कष्ट देकर ये आचार्य सब लोगों को भगवान की कृपा बांटते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मरते मरते भी किसी एक को खींच ले अंदर भगवान की भक्ति में तो वो भी उसका जीवन सफल है ना। लास्ट मोमेंट में भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड वन मस्ट सरेंडर इज लाइफ टू कृष्णा, डेथ बेड से बोल रहे हैं। आज भी वो जो फिल्म लोग देखते ना, उसको देख के भक्त बन जाते हैं, ये कैसा ही व्यक्ति है, शरीर त्याग रहा है, मर रहा है, क्या शरीर में एक एक जूल एनर्जी का कण भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन डेथ बेड से बोल रहा है कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो जो लास्ट शो देखते हैं ना लोग वीडियो में, तो भगवान के भक्त बन जाते हैं, नहीं शक्ति है। तो इसीलिए ये गौरांग महाप्रभु लीला को बड़े प्रेम से श्रवण करना चाहिए, कृतज्ञता के साथ करना चाहिए, थैंक यू बोलते बोलते करना चाहिए। हाँ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, जन्म से ही उन्होंने सबको हरिनाम में लगाया, जन्म होने के समय ही लगा दिया, पूरे वर्ल्ड को एक साथ लगा दिया, जो चाहने वाले हैं ना चाहने वाले हैं, जो विश्वासु है ना विश्वास करने वाले हैं, सब लोग को लगा दिया, हंसी मजाक में लगा दिया, गंभीरता से लगा दिया, रोते रोते लगा दिया, सबको लगा दिया, अच्छा चमत्कार किया उन्होंने। सबसे जो अपवित्र घड़ी है जिसको ग्रहण की घड़ी बोलते हैं, सबसे इन ऑस्पिशियस टाइम उसको परम पवित्र बना दिया उन्होंने, ये बगैर भगवान ही कर सकते हैं। सबसे अपवित्र घटना को सबसे पवित्र घटना भगवान ही बना सकते हैं। और भगवान के साथ साथ भगवान को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, भक्ति की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये प्रक्रिया भी जो आप अपनाएंगे ना, तो ये प्रक्रिया में भी आप जब रहोगे करते करते, तो आपके जीवन में भयंकर घटनाएं होती रहेगी, फिर भी आप परम आनंद को प्राप्त करते हुए रह सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट, यू मे बी इन द मोस्ट मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ बट यू विल कीप ऑन एक्सपीरियंसिंग हाइएस्ट ब्लिस ऑफ लाइफ इफ यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक भगवान है और उनके प्राप्त करने की प्रक्रिया है, दोनों अभिन्न है। हमारा जीवन भगवान तो नहीं मिले हमको, लेकिन भगवान को प्राप्त करने की प्रक्रिया तो मिली है ना, अगर उसको भी हम एकाग्रता से हृदय से फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में भयंकर दुख घटनाएं कर्मों के अनुसार होती रहेगी, लेकिन उसका परिणाम तो आपको नहीं होगा, ऊपर से आपको आनंद का अनुभव भी प्राप्त होते हुए आप जी सकते हो। दिस इज पॉसिबल बाय द वे, और मैं अनुभव की बात कर रहा हूं। तो ऐसा ऐसे कि वो कोई आचार्य बोलते हैं कि अगर आप तेल लगाकर नदी में उतरोगे, नदी के पानी का परिणाम आप पर नहीं होगा, वो जितना ही लगेगा वो बस फिसल जाएगा पानी, और आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। तो दुनिया में अगर आपको रहना है ऐसे विषैले दुनिया में जहाँ पर इतने पाप हो रहे हैं, और आपको उन पापी प्रभाव से मुक्त रहना है, तो आपको तेल लगाना पड़ेगा, है ना, हरिनाम संकीर्तन का, चार नियम पालन का, गुरु वैष्णव सेवा का, ये लगाएंगे तो दुनिया में रहते हुए जीते हुए जो कर्मों के आधार से जो कष्ट आ रहे हैं, पीड़ा आ रही, यातना आ रही है, उनके होते हुए भी आपको आनंद का अनुभव निरंतर प्राप्त होते रहेगा। इस विश्वास को लेकर चलो आप। ये मत समझो क्या है अभी, ये दिन उपवास करना है, आए दिन उपवास करना है, कभी हाफ डे, कभी फुल डे, कभी शाम तक, कभी रात तक, कभी 24 आवर्स, हर दम, हर महीने में 2 बार, क्या है सब सर लगेगा आपको। लेकिन वो कुछ भी नहीं है, जिसके बदले में हमको क्या मिल रहा है उसके सामने वो कुछ भी नहीं है जो दिया जा रहा है। इसलिए वो जो दिया जा रहा है, जो प्राप्त हो रहा है, उसकी वैल्यू, मूल्य समझना बहुत ज़रूरी है। और जब समझ में आएगा तो भक्त ना कितना भी सिंपल होगा, कितना भी सिंपल कल आया परसों आया होगा, कुछ भी होगा उसके बारे में, अयोग्य होगा, योग्य होगा, नहीं होगा, फिर भी परमोच्च प्राप्ति को अनुभव करते रहेगा वो हमेशा। ही विल बी एबल टू कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ऑफ भक्ति, आनंद, जिसके लिए जीव तड़प रहा है, जो जीव के लिए कल्याणकारी है, आवश्यक है, वो चीज़ जो जीव चाहता है अपने कल्याण के लिए, वो चीज़ वो निरंतर अनुभव करते रह सकता है। तो आइए हम गौर पूर्णिमा ऐसे बनाएं, क्योंकि तो अल्टीमेटली उत्सव कैसे होता है, बाहर के अरेंजमेंट से उत्सव नहीं होता है, उत्सव होता है भाव से। कोई गरीब है तो फिर वो सिंपल उत्सव मनाएगा, कोई राजा है तो फिर वो ऐसे ऐश्वर्य से उत्सव मनाएगा, लेकिन भगवान वो डिफरेंस देखते नहीं है, भगवान तो हृदय को देखते हैं, किस भाव से आप मना रहे हो उसको, मनाने वाले, व्यवस्था करने वाले की भाव क्या है, उसके ऊपर वो उत्सव का लाभ सबको होता है, उसके अनुसार होता है, उसके प्रमाण में होता है। ऑर्गेनाइज करने वाले पॉलिटिक्स करने वाले होंगे, झगड़ा करने वाले होंगे, तू तू मैं मैं करने वाले होंगे, तो वो उत्सव में उसी का नुकसान लोगों को होता रहेगा और थोड़ा बहुत लाभ भी मिलेगा। लेकिन जो भाव लेकर चल रहे हैं, तो तू मैं वाला, वो सब परिणाम सबके ऊपर होगा, क्योंकि व्यवस्था सब उन्होंने की है, उनकी चेतना का प्रभाव है यहाँ पर, प्रेम से, कृतज्ञता से, हाँ प्रेम से करेंगे ना, तो आपका उत्सव में भव्यता नहीं भी होगी ना, तो भी सबका हृदय भगवान की भक्ति से प्रेरित होगा। इसलिए पूरा भक्ति मार्ग जो है ना, वो भाव से बना हुआ है, भाव से आधारित है, और उसी को नापा जाता है, और कुछ चीज़ को नापा नहीं जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है, उसके ऊपर ही अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं, रियलाइजेशंस। जैसे महाप्रभु ने जन्म लेते ही ये चमत्कार की, यह बात कहाँ से निकली, क्योंकि इन ऑस्पिशियस सबसे जो घटना थी वो सबसे शुभ कर दी भगवान ने। फिर उसके बाद में जब भी रोए तभी हरे कृष्ण महामंत्र, जब भी रोए तो हरे कृष्ण महामंत्र। वो योगपीठ, सच्ची माता का घर जो था ना, वो ऐसे संकीर्तन मंडली का ही घर बन गया, वो कॉन्स्टेंट हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही चलता था उनके पास कॉन्स्टेंट। फिर कुछ सखियों ने क्या किया, उसको जबरदस्ती कुछ रुलाना शुरू कर दिया, ताकि ये रोए, फिर हम गाएं, फिर रोना बंद करें, फिर उसको रुलाएं, फिर गाएं, फिर रोना बंद करें, ऐसे शुरू कर दिया उन्होंने। इट्स सो हैप्पी एक्चुअली, तू सच्चा है हरे कृष्णा, अभी तक बोलने को भी नहीं आ रहा उनको, तब सबको हरे नाम संकीर्तन में लगा दिया उन्होंने। देवता आए घर पे, अदृश्य रूप में, दृश्य रूप में आए, उनके गोद में से छीन लिया, अभिषेक किया, अभिषेक करके उनको स्वच्छ किया, श्रृंगार किया, फिर जिनको चलने को भी नहीं आ रहा है वो भी चलने लगे अचानक उस लीला में, देवताओं की लीला में। हाँ अभी गोद में थे ना, अभी कुछ दिन के थे, लेकिन जैसे अभिषेक किया उनका तो मुड़ के बोले चलो देवताओं सब कीर्तन करो। तुरंत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सब देवता लोग नाच रहे हैं आनंद से, झूम झूम के नाच रहे, सची माता देख रही है, बेहोश होती है वो, ऐसा कैसे हो सकता है, चिंग 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 छुम 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 आवाज आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो घुंघरू की आवाज है, मैंने तो बालक को घुंघरू नहीं पहना है, लेकिन वो चल रहा है तो छुम छुम आवाज आ रहा है, और आश्चर्य हुआ, भाव विभोर हो गई, बेहोश हो गई, गिर गई, फिर पति आ गए उसके, क्या हुआ, सब दृश्य अदृश्य हो गया, देखा सपना आया मुझे, हाँ सपना ही आया होगा। फिर जो गोद में अभी तक कुछ दिन के बालक है ना, वो चल के गोद में आ रहे हैं, वो जब चल के गोद में आ रहे हैं तो वो छुम 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 देख रहे, अरे पैर में घुंघरू तो नहीं है, आवाज कहाँ से आ रही है, पापा भी देख रहे हैं कहाँ से आवाज आ रही है। ऐसा अद्भुत चमत्कार, वो जो सची माता का घर का आंगन है ना, अद्भुत आंगन है वो, उसमें ऐसी लीलाएं होगी हुई है कि वो सब खुद ही आश्चर्यचकित हुआ करते थे, ऐसे कैसे हो सकता है। एनीवेज थोड़े बड़े हो गए तो उन्होंने वो कुत्ते के पिल्ले को मुक्त कर दिया। कुत्ते का पिल्ला क्या होता है? कुत्ते के पिल्ले को वैष्णव लोग घर पर भी लेते नहीं है, क्योंकि तो कुत्ता किसी को देखता है तो वो चीज़ को भगवान को भोगने लगा सकते हैं, ऐसा कुत्ते का योनि है, दुर्भाग्य योनि एक्चुअली। उसमें भी कुछ अच्छे अच्छे गुण हैं, लेकिन फिर भी वैष्णवों के सिद्धांत के अनुसार वो बहुत निचली योनि है। ऐसे जीव को महाप्रभु गौरांग बालक रूप में गले लगाया, चुम्मा लिया उसका, क्या क्या नहीं किया उसको, तो कुछ ही क्षणों में वो एकदम भाव विभोर हो गया और नाचने लगा, वो हमारे जैसे वाणी में हरे कृष्ण बोलने लगा। मार्केट में गया, दो हाथ ऊपर उठाए, हाँ चार हाथ में रखना जरूरी है उसको ना, उसका बैलेंस तो चार पैर पे होता है, दो पैर भी होने लगा, दो पैर अपने आप आकाश में उड़ गए ऐसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुकानदार देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे, दुकान छोड़ के आ रहे हैं उसके पीछे, मार्केट में सब स्त्री पुरुष बालक सब इकट्ठा हो गए, जा रहे हैं उसके पीछे पीछे, तो सबके आगे जा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सबके आंखों के सामने आंसू बहाते हुए, शरीर खड़े रोमांच खड़े होते हुए, भाव विभोर होकर भगवान का नाम लेते शरीर छोड़ देता है गंगा किनारे, तुरंत उसकी आत्मा बाहर निकलती है, उसको चतुर्भुज विष्णु का स्वरूप प्राप्त होता है, तुरंत वैकुंठ से विमान आता है, उसको वहां पर स्वागत किया जाता है और सुंदर सुंदर गीत गाते हुए सत्कार करते हुए उसको गौलोक धाम लेके जाते हैं, सबके आंखों के सामने। ये आगे का सीन अदृश्य नहीं है, जो सीन पहले दिखता था उसके आगे का सीन कंटिन्यू है, इतना चमत्कार। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु निमाई ने उसको स्पर्श किया था, ऐसा है पावर उनका। भाई कुत्ते ने क्या साधना किया था, कौन सा व्रत किया था, कौन से चार नियम पालन किए थे, कौन सा 64 राउंड जप किया था, हाँ ऐसी कृपा है, अनन्य कृपा। तो कुछ आचार्य कहते हैं कि ये महाप्रभु की कृपा पर विचार करना चाहिए, एक बंगाली नाइस श्लोक है मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, कि इनकी कृपा पर विचार करना चाहिए हर एक व्यक्ति को, जस्ट थिंक, कीप थिंकिंग अबाउट द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, मन पवित्र हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, चित्त पवित्र हो जाएगा। थोड़े बड़े हो गए फिर वो बहुत मस्ती करने लगे, गंगा किनारे जाने लगे, वहाँ पर लोग स्नान करते थे ना, सब साधु लोग स्नान करते थे, औरतें स्नान करते थे, पुरुष स्नान करते थे, बच्चे भी स्नान करते थे, तो अपना अपना स्नान करते समय होता है ना, अभी साधु लोग इधर जाएंगे, औरतें इधर जाएंगे, प्रभुगण उधर जाएंगे, ऐसे चलता था। सब लोग अपना कपड़े उतार के जाते थे स्नान करने के लिए, जहाँ कपड़े उतारे उसके सामने जाते थे स्नान करने के लिए। हम लोग कैसे करते, इधर कपड़े उतरे तो उधर ही स्नान करेंगे थोड़ा उतर के, और देखते रहेंगे कपड़े की ओर, कोई ले तो नहीं जा रहे हैं, उसको रखते भी ऐसे हैं कि जो सबसे गंदा कपड़ा है उसको नीचे रखते हैं, फिर जो थोड़ा सा अच्छा है उसको ऊपर रखते हैं, फिर बीच में घड़ी रखते हैं, फिर उसके ऊपर टॉवल रखते हैं, ताकि और बाद में जो पहले सबसे चाहिए वो सबसे ऊपर रखते हैं, है ना, आते ही पहले क्या चाहिए, टॉवल चाहिए, ऐसे तरह से रखते हैं। तो ये गौरांग वहाँ पर आते थे निमाई, और साधुओं के कपड़े उठाकर औरतों की जगह पर रखते थे, और औरतों के कपड़े उठाकर साधुओं की जगह पर रखते थे। तो साधु लोग तो कैसे होते हैं ना, अभी गंगा जी में जाते हैं बड़े भाव से उतरते हैं, प्रणाम करते हैं, आचमन करते हैं, वंदन करते हैं, श्लोक बोलते हैं प्रार्थना वाले, फिर अंदर जाते हैं, फिर बहुत देर तक डुबकी लगाते हैं प्रार्थना करते हुए, फिर गायत्री जप करते हैं, फिर अर्घ्य देते हैं, कितने सारा काम करते हैं, भाव से करते हैं। वो हम लोग देखते हैं पीछे इसे, लेकिन वो देखते नहीं है उधर क्या है, लेकिन जब आते हैं तो साड़ी और ब्लाउज दिखता है उनको और ये लोग दूर से ऐसे 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 बहुत हंस रहे देखो देखो साधु कैसे अभी साड़ी ढूंढ रहा है, किधर है अपना धोती, किधर गया, ऐसा परेशान करते थे। तो वो लोग घर पे आके कंप्लेंट करते थे कि तुम्हारा लड़का हमको परेशान करता है, परेशान किया, संकोच ज़्यादा करता है। अभी देखो अभी साधु के कपड़े अगर औरतों के एरिया में रहेंगे तो कितना डिफिकल्ट है उसको, औरतों के कपड़े साधुओं के एरिया में तो कितना डिफिकल्ट है उनको। वो औरतें बाहर आते तो क्या दिखता है, सैफरन लंगोटी कोपिन, सैफरन धोती, सैफरन सब पड़ा हुआ है, कैसे क्या करेंगे वो, और सबका मजा देखते थे दूर से, दूर रहकर सब लोग आके कंप्लेंट करते थे। फिर अभी ये हो गया, उसके बाद में फिर पानी में जाते थे और जहाँ साधु लोग ऐसे खड़े होकर ऐसे गायत्री करते ना, तो पानी में अंडरग्राउंड अंडर वाटर जाके उनके ऐसे दोनों पैर खींचते थे और धाड़ करके पानी में गिर जाते गायत्री करते से। कैसा लगे आपको भी, आपने कभी गायत्री किया क्या, क्या समुद्र नदी में जाके ध्यान से कर रही थी नीचे कौन है निमाई और उसके उसके फ्रेंड्स। फिर कभी क्या करते थे, वो कोई ऐसे जुप कर रहा है पानी में खड़े रहकर, तो पानी के नीचे जाते थे, मुंह में पानी भरते थे, जब करने वाले आदमी के सामने आते थे और उसके मुंह पे पिचकारी मारते थे पानी की, ऐसा सब काम करते थे। लेकिन ये सब जब हो रहा है तो बाहर से सब लोगों को कष्ट हो रहा है और कंप्लेंट भी कर रहे हैं, लेकिन सबको हृदय में बहुत आनंद हो रहा है, ये भी एक अद्भुत चीज़ है। हाँ, ये कृष्ण की भी ऐसी लीला है, बता दो क्या अभी। हाँ, इसको कहते हैं फुत्कार लीला। क्या नाम उसका, जोर से बोलो ना, क्या नाम उसका, फुत्कार मतलब। तो उन्होंने दूध का भी चोरी किया, मक्खन का भी चोरी किया, दही का भी चोरी किया, ऐसा अलग अलग उनके लीलाएं हैं। तो दूध का चोरी जब किया ना, तो मटका फोड़ के दूध में धार गिर रही है और उसे पूरा उसको पी रहे हैं, तो उतने में गोपी आती है जक्कर। हाँ, तो जक्कर आती ना, तो ये लोग जो धार भरे ना उसको मुँह में भर लेते हैं, जिसे सामने आती है फुत्कार, तब तक तो आँखें मल रही है पूरा ऐसे ऐसे कर रही है, जब पूरा आँखें खोल रही है दूसरी ऐसे लगातार एक एक करके एक 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 फुत्कार मार रहा है और भाग रहा है, दूसरा फुत्कार मार रहा है दूसरा भाग रहा है, वो बीच में मल रही है मल रही है। अपने टाइम लगता है ना थोड़ा सा, आंखों में इतना अचानक व्हाइट लिक्विड आया तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना आपको वापस देखने के लिए, वो जैसे ही खोलेंगे वापस फुत्कार, सब लोग फुत्कार। तो ये बिलो मंगल ठाकुर की बताई वो लीला है, कृष्ण कवि कृष्ण करुणामृत में फुत्कार लीला कहते हैं उसको। तो ऐसे ही फुत्कार लीला करते थे गंगा जल से सबके मुँह पर। अभी ब्राह्मण को किसी की जूठन अगर मुँह पे आए तो स्नान करना पड़ेगा ना वापस, तो वापस स्नान करते तो वापस फुत्कार वैरायटी भी बीच में है, कभी पाँव खींच रहे कभी कभी ड्रेस चेंज कर रहे कभी फुत्कार मार रहे हैं अभी ये सब। फिर स्नान करके बाहर निकलने का कभी कॉन्स्टेंटली गंगा जी में है, कई घंटे तक यही चल रहा है, इधर से उधर उधर से इधर। ये बचपन में किया, और जैसे गोपियाँ आती थी ना घर पे नंद महाराज के यशोदा माई के कंप्लेंट करते हुए, लेकिन कंप्लेंट करने भी उनको बड़ा आनंद आता था, कंप्लेंट करना भी उनका एक बहाना था, उसके बहाने इसका दर्शन हो जाए, इसके बहाने उसको उसकी मधुर वाणी सुने। तो कंप्लेंट तो यशोदा को कर रहे हैं और देख रहे हैं अंदर कमरे में, कंप्लेंट इसको कर रहे हैं उधर देख रहे हैं, तो वो कहते बाबड़ी है क्या, किससे बात कर रही है तू मैं तो यहाँ खड़ी हूँ कमरे में देख रहे, क्योंकि वो सुनकर आ जाए तो उसका दर्शन हो जाएगा, यही भाव उनका भी था। घर जाते थे कंप्लेंट करने के लिए, क्यों, ताकि निमाई का दर्शन हो जाए, बस बहाने निमाई सफाई देगा फिर, नहीं नहीं मैं तो घर पे बैठा हूँ, मैं कहाँ गया हूँ, मैं तो आपके पास में हूँ, देखो कब से सो रहा हूँ, ये क्यों झूठ बोल रहे हैं मेरे लिए, ऐसा सब होता था। तो कंप्लेंट भी आनंद है, फुत्कार भी आनंद है, धोती को एक्सचेंज करना भी आनंद है, और पानी में गिरना भी आनंद है, सब आनंद ही आनंद है, है ना। एक तरह से पानी गिर रहा है आपको कितना संकोच हो रहा है, लेकिन उसमें भी आपको आनंद मिल रहा है, यही भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या, कष्ट हो रहे हैं फिर भी आनंद है उसके अंदर। ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं जितना कष्ट होता है उतना ज्यादा आनंद मिलता है। तुम्हारा सेवाया क्या होई होई लो जतना, आगे बोलते हैं कि तुम्हारी सेवा करते करते जो आनंद कष्ट होता है ना उसी में बड़ा आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि वो तुम्हारी सेवा में मिलने हुए मिलते हुए कष्टों से क्या होता है, अविद्या का नाश हो जाता है। इसलिए आपकी सेवा में जो करते हुए कष्ट प्राप्त होता है ना, दुख होता है ना, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है सेवा करना, वो कष्ट से ही अविद्या नाश होता है और आनंद की प्राप्ति होती है। तो उसके बाद में एक ब्राह्मण आया सची माता के घर पे। वो तो जंगल में रहने वाला ब्राह्मण, कभी जंगल में रहता है कभी फल फूल। उसके पास एक गोपाल जी का विग्रह था, तो वो गोपाल जी का विग्रह लेकर आया इनके घर में, उनका स्वागत किया गया। और वैष्णवों के लिए ब्राह्मण का, अतिथि का आना बहुत ही पवित्र माना गया है। अतिथि देवो भव है ना, जो अतिथि यानी आपके साथ अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आता है, वो आ जाता है, वो अतिथो अतिथि नारायण भव, वो नारायण माना गया है। जो बिना बताए आपके घर पे आता है तो हम लोग पहले पूछते कौन हो, क्यों आए हो, फोन नहीं किया आपने ये भी कोई तरीका है ये कलयुग है, जो अतिथि नारायण है वो आते ही हम लोग पूछते क्यों आए, दिस इज कलयुग। एग्जैक्टली उल्टा, जो आने पर आपको खुद को भाग्यवान समझना चाहिए, उसको जो भी रुकी सुखी आपके घर में वो देना जो है ना, वो आप नारायण की सेवा करने का लाभ मिलता है आपको। अभी मैंने कई साल तक घर में अतिथि आते हुए देखा नहीं है, क्योंकि सब लोग बता के आते हैं और हम भी किसी को बता के जाते हैं। इसको सिखाया जाता है कि आप कहीं जाओगे तो फोन करके जाओ, बता के जाओ, ऐसे टपको मत उधर जाके, ऐसे बताया जाता है अभी आजकल। दिस इज हाउ द वैष्णव शिष्टाचार ट्रेनिंग एंड एटिकेट्स आर टॉट दिस डेज। लेकिन मेरे बचपन में मुझे याद है, मेरे घर पे ना बहुत लोग आते थे, बहुत लोग आते थे, ऐसे अचानक आते थे गाँव से ऐसे, क्योंकि उस समय फ़ोन नहीं था, लैंडलाइन भी नहीं थी हमारे घर पे, तो लैंडलाइन नहीं, मोबाइल नहीं, ईमेल नहीं, कुछ नहीं, और ख़त लिखेगा तो भी 10-15 दिन के बाद पहुंचता है। तो लोग ऐसे आ जाते थे और सीधे ना गांव से सामान वामान लेकर घर पे पहुंच जाते थे। बिलीव मी, सच्चा कितना फेथ था लोगों को कि मैं जब ऐसा बैग लेके टपकूंगा आपके घर पे चार लोग को लेके, तो आपके चेहरे पे ऐसा वो नहीं आएगा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो ऐसा श्रिंकल नहीं आएगा कि क्यों आ गया ये, मेरा कुछ प्लान था अभी कहीं करने का, मैं भी कुछ बाहर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा होता ही नहीं था। कितना बड़ा सुंदर कल्चर था हमारा। तो हमारे घर पे ना, मेरे पिताजी ऐसे बहुत गरीब थे, बहुत सारे बच्चे थे और थोड़ा सा इनकम था, फिर भी यहाँ वहाँ से लोग आते थे तो तुरंत भोजन को बिठाते थे उनको, तुरंत इमीडिएट भोजन पे बैठो, भोजन करो, दो चार लोग एक्स्ट्रा उसमें हो जाता था। बोलो, गरीब के घर में बोल रहा हूँ मैं, अमीर आदमी का तो क्या प्रॉब्लम ही नहीं कुछ, लेकिन गरीब के घर पे ही होता था ऐसे। और ऐसा नहीं है अभी कभी जाओगे, वो भी आया सामान लेके बिना बताए रह गया, खाना खाया, उसने स्नान किया, फिर वो खाना खा के लेट गया, फिर रात को भी रह गया, फिर कल भी है वो और परसों भी है। तो कुछ देर बाद में वो लोग सेवई बनाते थे, सेवई मालूम है आपको, सेवई बनाना मतलब क्या है, कब जा रहे हो भी आप। तो हमारे गांव में उसको अगर मेहमान ज़्यादा रह गया ना तो सेवई बनाते थे, वो होता ना वो ऐसा ऐसा करके ऐसा करके वो बनाते थे, तो उसको इंडिकेशन है कि अभी अब जाओ लेकिन वो वैष्णव कल्चर नहीं है, वो फिर भी खराब कल्चर है, लेकिन ऐसे बताते नहीं थे कि आप कभी जाने वाले हो, कभी टिकट है आपका, कन्फर्म है क्या ऐसा पूछते नहीं थे कभी किसी को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी पूछते नहीं थे, ऐसा था। तो वैसे वो ब्राह्मण आ गया तो सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा बहुत प्रसन्न हो गए। तो वो ब्राह्मण अपने हाथ से ही खाता था हमेशा, जो भी कुछ बनाता था अपने हाथ से बनाकर गोपाल जी को भोग लगाता था। तुरंत इन्होंने उनके लिए किचन सेटअप कर दिया, अलग से पूरा सब्जी ला के दिया उनको, मसाले ला के दिए, अन्य धान्य ला के दिया, चूल्हा लगा दिया, सब कुछ व्यवस्था किया। ब्राह्मण ने भोजन करना शुरू किया, सुबह के समय आया था वो, दोपहर तक उसका भोजन बना, तो उसने बनाया। और अभी एक विशेष बात मैंने पढ़ी इसमें, बहुत सुंदर बात, गोपाल जी को स्थापन किया उसने, स्नान वान करके भोजन बनाया, सब कुछ कराया, फिर तुलसी पत्र रखा, थाली बनाया, वो हमेशा फल खाते थे। लेकिन सची माता और जगन्नाथ मिश्रा क्या बोले कि आप अभी हमारे घर पे आए हो ना, थोड़े जंगल में आए हो, जंगल में कंदमूल और रूट्स और फ्रूट्स खाना ठीक है, आप हमारे घर पे आए हो, आप पूरा भोजन करो, मतलब चावल दाल सब्जी सब जो भी है वो पूरा कंदमूल खाली मत खाओ, फल भी लगाओ लेकिन धान्य के साथ में खाओ। तो वो अपने हाथ से चावल पर सब बना देते हैं, पूरा थाली बना देते हैं और भोग लगाते, कहते हैं उसके बाद में वो तुलसी रख कर ना गोपाल को बुला रहे हैं, गोपाल आओ आइए प्लीज कम, पुकार रहे हैं उसको और घंटी बजा के पुकार रहे हैं। इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या, हम लोग क्या करते हैं, ए लोगों घंटी मार जरा उशर हो तो है ना, घंटी मारा क्या, जल्दी करो जा जाना है ऑफिस में। तो उसमें किधर भक्ति भाव, क्या पुकारना किधर है, उधर कुछ नहीं है। लेकिन पुराने जमाने में जब लाइफ स्लो था ना, बड़े प्रेम से भगवान को पुकारते थे, आओ भोजन करो, ऐसे मुद्रा से पुकारते थे उनको। तो ये पुकार रहे हैं, तो पुकार रहे हैं आंखें बंद करके भाव से पुकार रहे हैं, उतने में निमाय भाग भाग के आते हैं और तुरंत हाथ डाल के उसमें चावल खाने लगते हैं, वो सब खाने लगते हैं। वो कहता है हाय 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 हाय, ये बालक ने मेरा वो भोग जो है वो सब खराब कर दिया पूरा पूरा, अभी मैं इसको कैसे भगवान को लगाऊंगा, ये तो झूठा हो गया, हाय हाय बालक ने भोग खराब कर दिया। तो उसका पुकार सुन के सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा भाग भाग के आए, क्यों ब्राह्मण चिल्ला रहे, देखते तो हमारा बालक जो है वो खा रहा है उसमें से। अरे निमाई तू ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये सिखाया था तुझे, इतना सब गुस्ताखी कर रहे हो, पीछे भागते हैं वो भाग रहे हैं। फिर उसको लोग वापस आते हैं, बोले महाराज जी माफ करना बालक है, बोले कोई बात नहीं, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं, बालक है उसको तो पता नहीं है, अनजान बालक है वो, निष्पाप बालक है, उसको पर इतना गुस्सा मत करो क्योंकि वो भाग रहा है डर डर के, डर डर इतना डरना बालक के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है ठीक है, मैं फल खा लूंगा, उसमें क्या है, मुझे फल खाने की आदत है, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं महाराज जी माफ़ करना, हमारा बालक अभी क्या करे, अभी इतना वो क्या है ना, क्या कहते हैं उसको, नटखट है, इतना वो हटी है, इतना शरारती है, क्या करें अभी, प्लीज़ माफ़ करना, आप दोबारा बना देना प्लीज़। नहीं नहीं मेरे भाग्य में नहीं लिखा है, मैं आई एम ओके। नहीं नहीं महाराज हमको दुख हो रहा है कि हमारे घर में आप, हमारे बालक ने आपके लिए ऐसा किया और आप भूखे क्यों रहेंगे हमारे घर पे, हमको कितना दुख होगा, दोबारा हम सब साफ करके बना देंगे। दोबारा पूरा साफ किया, पूरा दोबारा सब्जी ला के दिया। हमारे अपने गाँव में ना अभी भी तरीका होता था, अभी पता नहीं है कि नहीं, लेकिन हमने देखा हुआ है, एक बार का भोजन बनाने के लिए फ्रेश चूल्हा बनाते थे, फ्रेश ईट, फ्रेश मट्टी से लिपना, उस जगह को भी तोड़ के साफ किया जाता, उसके बाद दोबारा ईट रख के मट्टी लेप के दोबारा चूल्हा बनाते थे शाम के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए अलग, लंच के लिए अलग, डिनर के लिए अलग, तो तुरंत वापस चूल्हा बना देते, नए इंग्रेडिएंट्स लेके आते हैं, नए धान्य लेके आते हैं, फल सब्जी मसाले लेके आते हैं, महाराज प्लीज दोबारा बनाना शुरू करते हैं। और इस बार क्या करते हैं, वो बालक को ना पड़ोसियों के घर पे छोड़ देते हैं और सबको बोलते हैं कि देखो इसने ऐसा ऐसा किया है, इसको ना ध्यान रखना इसको पर, और इसको जाने मत देना अपने बीच में से, और इधर खाना बनाना शुरू करते हैं ब्राह्मण वापस। उधर ना वो निमाई ना वो इतना, मतलब उसकी लीला इतनी मनमोहक है, इतनी मनमोहक है कि वो मीठी मीठी बातें बोल के सबको ऐसा रिझा रहा है, सब लोग रिझ रहे हैं, सब लोग ऐसे भाव विभोर हो गए, उसके बीच में सटक जाता है बच्चा, हाँ सबको ऐसा गुल गुम गुम करके निकल जाता है। यहाँ पर उसका भोग बनता है, वापस वो पुकार रहा है, गोपाल जी आइए भोग लगाया हूँ, आइए घंटी बजा रहे हैं, पुकार रहे हैं उनको, आह्वान कर रहे हैं, उतने में फिर से चालू सब, उनको लगा अभी निश्चिंत है ना, जगन्नाथ मिश्रा निश्चिंत है, लेकिन बाहर उस पड़ोसियों के बाहर डंडा लेके बैठे हैं कि भाई ये गेट है यहाँ से निकलेगा तो पकड़ूंगा उसको, लेकिन पता नहीं कहाँ से निकलते हो, उधर ही डंडा लेके बैठे हुए हैं बाकी सब निश्चिंत है कि अभी बच्चा उधर उनके पास में है तो टेंशन नहीं है। फिर भी आकर खाता है, हाथ डालकर, दोनों हाथ डालकर खा रहा है, वो हाय 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 पुकार रहा है दोबारा एक बार, तक शाम हो चुकी है, शाम बीच देर देर रात हो चुकी है। तो कहता है कि शायद बाद मेरे भाग्य में धान्य प्रसाद है ही नहीं, कुछ फल ला के दो बस, कंदमूल मैं खा लूंगा, अभी गोपाल जी की इच्छा नहीं है तो कैसे मैं उनकी इच्छा के खिलाफ मैं कोशिश करते रहूंगा। उतने में जगन्नाथ मिश्रा के ज्येष्ठ पुत्र निमाई के बड़े भाई विश्वरूप वहां से आ जाते, ऐसा वर्णन आया उनका, छोटे से बालक थे वो, कुछ 9-10 साल के होंगे उस समय, बहुत सुंदर गौर वर्ण था उनका, बहुत लंबे लंबे भुजाएं, छोटी छोटी लंबी लंबी उंगलियां, कमल जैसी आंखें, सुंदर घुंघराले बाल, चेहरे में अप्रतिम तेज, और इतनी सुंदर उनकी मनमोहक चाल, वो चल के ऐसे आ रहे हैं, और सीधे आके दंडवत प्रणाम करते हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मण ऐसे देखते रह जाता है, कहते हैं किसका पुत्र है ये, हू सन इज ही, कौन है इसके माता पिता। तो जगन्नाथ मिश्र सची माता कहते हैं कि ये हमारा ही पुत्र है, ज्येष्ठ बालक। ये भी श्रीमद् भागवत सुनकर अद्वैताचार्य के घर से आ रहा है लौट के, तो उसको भी पता है कि क्या हो रहा है घर में। उतने में वो जगन्नाथ मिश्रा भी बोल रहे हैं माफ करना माफ करना, और जब इस बार वो डंडा लेकर भागते उसके पीछे मारने के लिए, तुझे मैं अभी छोड़ूंगा नहीं, तुमने दोबारा ये शरारत की है, तो फिर वो बोलते क्यों मार रहे हो उसको, डंडा मत दिखाना, वो डर जाएगा बेचारा, बालक है वो, निष्पाप है, उसको छोड़ दो आप। तो अभी रात हो चुकी है ना, रात होने वाली, तो फिर विश्वरूप उनको ना हाथ जोड़ के विनती करता है, इतनी मधुर वाणी से, इतनी प्रेम की वाणी से बोलते, ब्राह्मण देवता हम गृहस्थ लोग हैं, हमारे लिए अतिथि का सत्कार बहुत महत्वपूर्ण है, और आप अगर हमारे घर पे आकर अगर भूखे रहे, केवल फल फूल खाकर रहे, तो कैसे होगा ये। और एक बात बताना भूल गया मैं, आपको जानना ज़रूरी है कि जब तक ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया तब तक घर में किसी ने भी भोजन नहीं किया था। जयप्रथा का महाराज बताते हैं दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, इतनी उच्च, क्योंकि घर में जो मेहमान आया है उसने तो भोजन भी किया ही नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं, दो बार फेल हो चुका है तो उन्होंने भी भूखे हैं, सुबह से भूखे। तो विश्वरूप ये नहीं बता रहे ब्राह्मण को कि मेरे माता पिता भूखे हैं, आप खाओ ना फिर वो भी खाएंगे, ऐसा नहीं बोल रहे हो। वो कह रहे हैं कि वैष्णव धर्म के अनुसार आप अगर नहीं खाएंगे तो हमारे तरफ से अपराध माना जाएगा उसको हमारे घर में आकर, इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ कि कुछ भी बात नहीं है, देर रात होने पर भी प्रॉब्लम नहीं है, आप देर रात से भी भोग लगाएंगे तो भगवान खाएंगे, आप कृपा करके भगवान को देर रात होने पर भी बनाइए और लगाइए। तो विश्वरूप की मधुर वाणी से प्रभावित होकर वो तीसरी बार रात के समय भोजन बनाना, नया चूल्हा बना कर देना, ये सब चालू हो जाता है, और तीसरी बार भोजन बनाता है। इस समय वो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता बहुत मीटिंग करते हैं कि बहुत दिस इज वेरी सीरियस मैटर, चलो एक बार शरारत किया ठीक है, अभी दिस इज सीरियस, अभी तीसरी बार होने को जा रहा है, दिन पूरा उसमें चला गया है, ब्राह्मण देवता भूखे हैं, गोपाल जी को भोगने लगा हुआ है, सब हमारे घर में हो रहा है, कुछ करना चाहिए उसके लिए। तो कहते हैं इसको ना अभी हम सुला देते हैं, सोने का समय तो हो ही गया, अभी संध्या हो गई है तो उसको सुला दो। सभी सखियों को पैरा लगाने को खड़ा कर देते हैं और ये सो जाता है, ये सोने के बाद गहरी नींद में जाता है। तो सब लोग भी वैसे ही, सोने का प्लान नहीं है लेकिन अभी इतनी देर से भूखे हैं, जग रहे हैं, इतनी देर हो चुके हैं, वो भी नींद आ जाती सब। और बीच रात में कहते हैं मध्य रात्रि के प्रहर में इसका भोग तैयार हो जाता है, और वो तीसरी बार कितना ब्राह्मण के अंदर कितना भक्ति रह के देखो, थर्ड टाइम भी उसी भाव से पुकार रहे हो, ऐसे नहीं बोला अभी जल्दी आ जाओ बहुत हो गया, अभी दो बार तो पुकार चुका हूँ प्लीज़, अभी मुझे मंत्र बोलने की शक्ति भी नहीं बची, इतना ग्लूकोज लेवल लो हो गया ना अभी, अब आ जाओ अभी, आप ले लो मुझे जल्दी, दो मिनट में खा लो, मुझे भी खाना है, ऐसे हम लोग करते हैं बाय द वे। तीसरी बार भी उतनी भाव से पुकार रहे हैं सब लोग, योग माया के प्रभाव से ना, जैसे कंस के कारागृह में सब लोग सो गए थे ना, सब लोग सो गए, और ये भाव से गोपाल को पुकार रहा है, गोपाल आ जाओ। और फिर जिसमें दरवाजे को कड़ी लगाई गई है उसमें से भी निमाय भाग के आते बाहर, कैसे आते मुझे मत पूछना, सब लॉक है, सब जगह से लॉक कर दिया, अंदर बाहर से लॉक है, सब सोए हुए उसमें बीच में भी ये आ जाते हैं, और वैसे ही हाथ डालकर चावल खा रहे, तो वापस हाय हाय पुकारता है हाय हाय, इस बार उसकी हाय पुकार के होने के बाद में किसी को सुनाई नहीं पड़ता है, सब लोग सो रहे हैं, चिल्ला रहा है बीच रात में, उसमें पहली बार निमाय बोलते हैं, अरे हर बार पुकारते हो और हर बार मैं आता हूँ और पुकारने के बाद बोलते हो हाय हाय, क्या बात है ये, आप मुझे पुकार रहे हो मैं आ रहा हूँ, और आपने मुझे पुकारा है भोग खाने के लिए और भोग बना आपने ऑफर किया है तो मैं खा रहा हूँ उसको, तो क्यों हाय हाय कर रहे हो। तो समझ में नहीं आया कि बालक बहुत उद्दंड बालक है, ये खुद को गोपाल बोल रहे हैं, है ना, खुद को गोपाल बोल रहे हैं। तो वो भी आश्चर्य कर रहा है कि बालक बड़ा अजीब बालक है, और खाए जा रहा है, ऊपर से बोल रहा है और खा भी रहा है, ऐसा नहीं कि रुक रहा है बीच में। तो फिर उनके आंखों के सामने वो बालक जो है वो गोपाल बन जाता है, श्री वृंदावन बिहारी गोपाल, नील वर्ण के पीताम्बर धारण किए हुए, मोर पंख धारण किए हुए, वनमाला धारण किए हुए, हाथ में मुरली लेकर गोपाल जी प्रकट हो जाते हैं। और केवल गोपाल प्रकट नहीं होते हैं, गोपाल के पीछे गौ प्रकट होती है, केवल गौ प्रकट नहीं होती है, सारा वृंदावन धाम प्रकट हो जाता है, यमुना जी, गोवर्धन, मोर, कोयल, चक्रवाक, सारे पक्षी, भंवरे, पेड़ पौधे, कुंज निकुंज सब प्रकट हो जाता है। और गोपाल सामने खड़े हैं, मुरली देकर मुरली बजा रहे हैं, और ये ब्राह्मण जो है पूरे भाव विभोर हो जाते हैं, ही गेट्स मैड कंप्लीटली, उसके आंखों से आंसू आते हैं, शरीर पे रोमांच खड़े होते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाता है, कंठ गदगद हो जाता है, गिर जाता है वो बेहोश होकर, फिर उठता है, फिर गोपाल गोपाल पुकार के फिर गिर जाता है, बार बार अनेक बार गिरता है वो, अपने आप को संभल नहीं पाता है। फिर गोपाल जी बहुत देर के बाद जब भी पूरा वृंदावन दर्शन करता है तो गोपाल जी बोलने लगते हैं कि तुम मेरे शाश्वत भक्त हो, जब मैं नंद भवन में आया था जन्म लेकर तब भी तुम वहां पर आए थे, और तब भी तुम्हारे चावल मैंने चुराए थे, मैं वही हूं जिसको तुम पुकार रहे हो, जब तुम पुकारते हो तो मैं आ जाता हूं, और आज ये रहस्य जो मैंने आपको भेद किया है ये आपको किसी को बताना नहीं है। वो ऐसे बोलकर बालक अदृश्य हो जाता है, वृंदावन भी अदृश्य हो जाता है, गाय भी अदृश्य हो जाती है। तो ये ऐसे ना, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं वेलिंग, यू नो, रोरिंग, अभी क्या कहते हैं उसको, दुख से नहीं, आनंद से, जैसे हमारे भक्ति तीर्थ महाराज ना एंड एंड में जब उनका जीवन का अंत का समय आया था तभी वैसे वो पुकार के रोते थे एकदम जोर जोर से, उसको ऐसा रोना धोना नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन वो प्रेम के अश्रु और प्रेम की पुकार है, वो कंठ भी ऐसा एकदम जोरदार आवाज करके पुकारते हैं, ऐसे जोर से पुकारने लगा, गोपाल गोपाल करके उस सारे चावल लिए उसने, सारे गाल पे लगाए, बॉडी पे लगाए, खाने पे, छाती पे लगाए, सब जगह वो बल रहा है चावल को लेकर, प्रसाद है ना गोपाल का, अरे साक्षात प्रसाद पाया गोपाल ने भोग लगा के, तो सारा जितना भी भोगता ना सारे शरीर पर बल के पुकार रहा है, रो रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, चिल्ला रहा है, तो वो सुनकर सब जग जाते हैं। इसके बाद में जगन्नाथ मिश्रा भाग के आते हैं, बोले ब्राह्मण देवता क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो, बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। अभी उसको बोलना भी नहीं ना, उसको बोलना बहुत है लेकिन बोलना भी नहीं है, उसको ऑर्डर भी देख रखा है ना कि भाई बोलना नहीं है आपको, तो उसको बोलना बहुत सारा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, बोला ठीक है नाच रहा है। तो फिर वो सोचते हैं कि दिन भर भूखा रहा ना, उसके बाद में एंड में खाने को मिला ना, इसलिए खुश हो गया रहेगा, चलो आप सो जाते हैं, लेट ब्राह्मण एंजॉय, चावल फ्रॉम द टंग, चावल फ्रॉम स्किन ऑल्सो, ऐसा है। फिर वो ब्राह्मण है ना, उधर ही सच्ची माता के घर के सामने झोपड़ी बना देते, और पूरे जितनी बाल लीला हुई ना उनकी 24 साल की जितनी भी लीला हुई सारी बैठ के निहारते रहते हैं, बोल नहीं पाता है, हे सच्ची माता, हे जगन्नाथ मिश्रा, आप जानते नहीं हो तुम्हारे घर में परम ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान बालक भरकर डोल रहे हैं, ऑर्डर है ना उसको, रोज निहारता था, सारी लीलाएं निहारी उसने वहां पर बैठ के, एवरी डे वुड कम एंड अप्रिशिएट द ग्रेट फॉर्चून ऑफ सच्ची माता एंड जगन्नाथ मिश्रा एंड एवरीबडी एल्स, इनके आंगन में साक्षात परम ब्रह्म रेंग रहे हैं और लीला कर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि कौन है। तो ऐसा ये नवद्वीप का भाग्य है। इसके बाद में फिर चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु का मुंडन होता है, चूड़ाकरण विधि होता है, इसके बाद में कर्णभेद होता है। कर्णभेद का ऐसा महत्व है कि कर्णभेद जब होता है उसी समय विद्यारंभ होता है, विद्यारंभ भी उस समय करते हैं। तो कर्णभेद जब हुआ तभी उनका विद्या शुरू हुई, तो उन्होंने कहते हैं कि एक दिन में सारे बंगाली जो है ना स्वर सब सीख लिए, एबीसीडी होता है ना, एबीसीडी एफजी क ख ग एंड तक होता है, वो सारा एक ही दिन में सीख लिया, ओनली वन डे। और जब उनको लिखना सिखाया तो कहते हैं कि वो दिन भर बांग्ला में कृष्ण के नाम लिखते रहते थे, होल डे यू वुड जस्ट ओनली राइट कृष्णा डिफरेंट नेम्स, गोविंद, गोपाल, गिरिधारी, ऐसे लिखते रहते थे, बड़ा आनंद का अनुभव करते थे। तो इस तरह से अनंत लीलाएं हुई है। हाँ, अनंत लीलाएं, बचपन की लीलाएं। थोड़े बड़े हो गए फिर कीर्तन करना शुरू करते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे जंप करते हैं। हाँ, थोड़े इतना आगे नहीं, तो अभी बालक है वो, तो वो अभी नदी में जाके मजा कर रहे हैं, उधर सबको तकलीफ दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। आगे जाके अभी एक बात आपको बताना चाहता हूँ मैं, समझो मैं कल ट्रेन में बैठ के गणित कर रहा था, तो किसी की तनख्वाह अगर 1 लाख रुपए है तो दिन का पगार कितना हो गया? 4,000 रुपये, 25 दिन का काम होता है ना, 4,000 पगार हो गया तो 1 घंटे का कितना हो गया? 500 रुपये। इसका 2 लाख पगार होगा, उसका 1 घंटे का पगार कितना हो गया? 2,000, 1,000 रुपया। 50,000 हो गया तो कितना पगार हो गया? 250 रुपया 1 घंटे का। अगर 25,000 हो गया तो 125 रुपया, 12,000 हो गया तो 60 रुपया घंटे का पगार हो गया। और समझो कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जिनका 15 लाख सैलरी होती है, कभी कभी 30 लाख सैलरी होती है, कभी करोड़ों में भी होती है IIT लोगों की। तो एक एक घंटे का उनका वैल्यू होता है, ऑफिस में जब 8 घंटा बैठते ना तो हर एक 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 घंटे का, 2-2 मिनट का, 10 मिनट का वैल्यू होता है उनका। और प्रधानमंत्री होगा तो उसका 1 घंटे का वैल्यू कितना है? अगर अमेरिका का अध्यक्ष है तो उसका 1 घंटे का वैल्यू कितना है? हमारे सेनाजी प्रभु है ना, उनके ऑफिस में 2-2 मिनट के अपॉइंटमेंट देते थे कभी कभी, 2 मिनट्स स्टैंडिंग अपॉइंटमेंट, आउट नेक्स्ट 5 मिनट्स, ऐसे उनका दिन भर अपॉइंटमेंट चलते थे, एकदम कट टू कट टाइम। क्योंकि 2 मिनट में इतना अचीव करना है, 5 मिनट में उतना अचीव करना है, आधा घंटे में उतना अचीव करना है, क्योंकि उनके हर एक घंटे की एक वैल्यू है ना, उनका हर एक घंटे का एक वैल्यू है कि इतना खर्च हो रहा है उनके ऊपर। प्रधानमंत्री जब यहाँ से वहाँ जाते हैं तो करोड़ों पे खर्च होते हैं, और फिर अबजो रुपए का डीलिंग करके आ जाते हैं लौट के, उनका एक अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसे अगर प्रधानमंत्री के 1 घंटे की वैल्यू है और अमेरिका के अध्यक्ष की एक वैल्यू है 1 घंटे की, तो श्री कृष्ण की 1 घंटे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई? कर सकता है क्या वो? देखो अपना गौलोक का अति प्रेममय लीलाओं का सानिध्य और आनंद छोड़कर 48 साल के लिए पृथ्वी पर आए हैं। इससे प्रोजेक्ट ना, 48 ईयर प्रोजेक्ट, और 48 साल में कितना सारा अचीवमेंट करना है उनको, अगर आपने बिजनेस पॉइंट से देखा जाए तो 48 ईयर्स में क्या क्या करना है उनको, तो कितनी वैल्यू है उनको। और ये ऐसा नहीं कि बहुत प्रेजेंट वही दुनिया है, इसमें तो सब लोग पापी लोग हैं, सब चोर है, उचक्के हैं, चीटर्स हैं, हाँ व्यभिचारी है, शराबी, जुआरी, सब लोग बड़े बैठे हुए इधर, ढोंगी, पाखंडी, मायावादी, अविशेषवादी, हाँ अश्रद्धालु, एग्नोस्टिक्स, भगवान को न मानने वाले, भगवान को शत्रु मानने वाले, ऐसा बहुत सारे वैरायटी इधर। इनके बीच में उधर का इतना आनंद छोड़कर 48 ईयर्स रहना है, तो प्लान तो होगा ना बड़ा कुछ, और कितनी वैल्यू होगी इनके घंटों की। तो ऐसे परम कीमती मूल्य जिनके समय का है, वो निमाई अपने छोटे उम्र में सुबह के समय रोज एक गुप्त स्थान पर जाया करते थे, जो किसी को पता नहीं। पता है किसी को कौन सा स्थान है वो? वो स्थान है श्रीधर आंगन सीमांत द्वीप में, किसी को पता नहीं है, नो साथी नो फ्रेंड, अकेले जाते थे वहां पर। और वहां पर ये श्रीधर जो कृष्ण लीला में कुसुमासव गोपाल था, भगवान का सखा था वो, कुसुमासव उनका नाम है, वहां पर श्रीधर बनकर बड़े विरक्त भाव से रहता था झोपड़ी में उसके। और उधर वो ऐसा कहते हैं कि उसकी धोती है ना, धोती कम होल ज्यादा रहते थे, और वो जोड़ जोड़ के उसको बोलते ना, तो या फट गया तो दोनों गांठ मार देने का, तो वही उनका स्टिचिंग है। उसके झोपड़ी पे जो छत था ना, उसमें छत कम और छेद ज्यादा थे, सब जगह पानी गिरता था हमेशा बरसात का घर में। और वो इतना प्रेम प्रामाणिक भक्त था भगवान का, इतना प्रामाणिक भक्त था, दिन रात भगवान का नाम पुकारता था। और वो केले के पत्तों से बनाए हुए दोने, और केले का होता ना वो गाब्बा बोलते हैं उसको, स्टेम जो हम लोग साउथ इंडियन लोग यूज करते हैं ना सब्जी में अपने, उसका कवर निकाल के बीच में से, बहुत ठंडा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, वो बेचता था। फिर केले के पत्ते, फिर केले के फल और दो तीन चीज़ें और बनाई हुई उनमें से, वो सब उसका दुकान लगाता था झोपड़ी के सामने, और वो बेचता था। पूरे नवद्वीप में सबसे कम दाम में वो बेचता था, इतना प्रामाणिक था वो, और दिन रात भगवान का नाम जपता था। और इतना सा जो इनकम होता था थोड़ा सा, उसमें से 50% इनकम वो गंगा जी की सेवा में लगाता था। कुछ इनकम ही नहीं है, आधा भूखा रहता था, लेकिन फिर भी जो 10 रुपये आए तो 5 रुपये, 3 रुपये आए तो 1.5 रुपया, ऐसे उसका जीवन था। और रात भर गंगा जी का पूजन करने के बाद में रात भर जोर जोर से कृष्ण को पुकारता था। तो लोग समझते थे कि इतना गरीब है बेचारा, भूखा है, धंधा नहीं हो रहा है, रोटी नहीं मिल रही, तो रोटी फेंकते थे उसके घर पे, हे रोटी खा ले, चुप रहना, रात को हमको नींद नहीं आ रही, इतना जोर से पुकारते रहते हो, भूखे हो तो चिल्ला तो क्यों, ये लो, फेंकते थे रोटी, खाओ इसको, चुप रहो। लेकिन रोटी का भूखा नहीं था, वो भगवान का भूखा था, रात भर पुकारता था भगवान, ऐसा अद्भुत था व्यक्ति वो, ऐसा यूनिक व्यक्ति था वो पूरे नवद्वीप में। तो उसके पास ये सुबह जाते थे, और मैंने सब इतना पूरा गणित क्यों बताया आपको, उसके पास कई घंटे बिताते थे, कई घंटे। हम बोले क्या टाइम पास कर रहे हैं भगवान, इतना बड़ा काम करने में, इतना बड़ा अवतार लिया है, इतना एक 1000 कलियुग के बाद में आ रहे हैं, इतना कितना प्रेशियस है वो। अगर आप जिंदगी में एक ही बार 3 दिन के लिए इंग्लैंड जा रहे हो, तो आपके लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई सब देखना है, 3 दिन के बाद वापस जाना है, पता नहीं वापस कभी आएंगे। सो 1000 कलियुग के बाद में आए हुए अवतार भगवान के, इतने घंटे टाइम पास क्यों कर रहे हैं, इतना लोगों का उद्धार कर सकते हैं उतने घंटों में। जरा डाल पानी लो। तो क्या कर रहे हैं, बोले मुझे केले के पत्ते चाहिए, थोड़े केले चाहिए, थोड़ा दोना चाहिए, कितने में दोगे? तो अपना पूरा नवद्वीप में सबसे कम दाम जो उसको बोलते थे, बोलते इतना महंगा क्यों दे रहे हो, कितने जगह सस्ता मिल रहा है, तुम इतना महंगा दे रहे हो, तुम चीटिंग कर रहे हो। देखो निमाई, इससे कम कहीं भी मिलेगा ना, जाके ले लो ना, इससे कम अगर मिलता हो तो जरूर ले लो, मेरे पास इससे कम नहीं कर सकता मैं, नहीं तुम चीटिंग कर रहे हो। तो कह रहे निमाई, अगर आपको लगता है कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, तो नवद्वीप में इतने सारे दुकानदार बैठे हैं, तो इधर क्यों आ रहे हो, उनके पास जाके ले लो ना, जहाँ पर प्रामाणिक दाम से मिल रहा है वहाँ ले लो, इधर क्यों आ रहे हो। नहीं नहीं, मुझे इधर से लेना है और इससे भी कम दाम से लेना है। अरे निमाई ऐसे क्यों कर रहे हो आप, मैंने कहा ना कि इससे कम नहीं हो सकता है। नहीं फिर बोलते थे आप, हम लोग ऐसे करते ना कि भाई फिर वो 3 जोड़ी दे दो, फिर 5 जोड़ी दे दो, फिर 5 जोड़ी का 40 रुपये कर दो, 10 रुपये का जोड़ी है ना, तो 5 जोड़ी 40 रुपये दे दो, या तो 3 जोड़ी 25 रुपये दे दो, ऐसा बोलते थे हम लोग ना, वैसा शुरू कर देते हैं, ठीक है मैं इतना लूँगा फिर मुझे कितने में दोगे। तो बोले नहीं हो सकता है, देखो निमाई नहीं हो सकता है ये, बहुत तुम ना बहुत धनी व्यक्ति हो मैं जानता हूँ, तुम ना ऐसे लोगों को ज़्यादा दाम कर करके बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करके छुपा के रखा है, मैं जानता हूँ बाहर से दिखाता हूँ तुम गरीब हो, फटी धोती पहनते हो, फटे छतवे छत वाले झोपड़ी में रहते हो, लेकिन तुम बहुत बड़े धनी हो और चीटिंग कर रहे हो और छुपा छुपा के रखा है, एक दिन आएगा ना मैं तुम्हारा पूरा धन एक्सपोज करूँगा, सबके सामने तुम्हारा पोल खोल दूंगा। थोड़े दिमाग ऐसा क्यों कर रहे हो, इतनी शरारत क्यों कर रहे हो, मत लो मेरे से आप। बाद में बोलते हैं देखो मुझे इतना इतना माल चाहिए और आज मैं फ्री में लूंगा आपसे, बिल्कुल पैसा नहीं दूंगा। बोले निमा ऐसा क्यों कर रहे हो, इतने दिन घंटे दाम लगाने में गए आपके, इतना नहीं ले रहे, ले रहे हैं अभी बोल रहे हैं फ्री में दो, ऐसा सब घंटों घंटों चर्चा करते थे। मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है कि क्या क्या बोलते थे वो, अभी रोज साकरे गोर में गोपियों को रोकते हैं और रोज क्या बोलते हैं किसको मालूम पड़ेगा, रोज किस बात में झगड़ा कर रहे हैं, क्या रोज का मूड है, हू नोज, पर रोज नोक झोंक होती है वहां पर, वैसे इनका रोज का नोक झोंक है कई घंटों घंटों। तो एंड में ना अपने को जो चाहिए वो फल जितने दोने उतने पत्ते उतना ये उतना वो स्टेम वो लिखा के भाग जाते थे और वो पुकारते रहता निमाय निमाय ऐसे मत करना मत करना मत करना। फिर दोबारा आते थे अगले दिन, फिर वही बात, तुम बहुत महंगा बेचते हो, तुम ऐसा करते हो और तुम ज़्यादा दाम दाम लेते हो, मुझे इतना में दे दो। और रोज भाग भागते थे एंड में। तो देखिए बालक मुझे बहुत कष्ट देता है, अरे मैं गंगा की पूजा करता हूँ, मुझे पैसा चाहिए उसके लिए, आधा पैसा मैं उस पर लगाता हूँ, ये रोज ऐसे लेने जाने लगेगा तो मैं कैसे गंगा की पूजा करूँगा। ऐसे रोज का लीला है उसका। तो एक दिन वो कहते हैं कि अभी तुम्हारा ना एक दिन भांडा फोड़ दूंगा मैं। तो अभी ये कथा मैं यहाँ रोकता हूँ क्योंकि इससे कनेक्टेड एक कथा है दूसरी। उसके पहले भगवान ने महाप्रकाश लीला किया, सत प्रहरी, सात इंटू एक प्रहर 3 घंटे का, 21 घंटे का लीला किया। उसमें भगवान ने अपना भगवत स्वरूप सबको दिखाया, छन्न अवतार क्या अवतार था उनका, लेकिन उन्होंने भगवत स्वरूप सबको दिखाया। और एक बात मैं बताना भूल गया आपको कि चैतन्य महाप्रभु की ऐसी विशेषता है कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार में उसके पहले भगवान के जितने अवतार हो गए हैं उन सारे अवतारों के जितने भक्त हैं वो सभी गौर लीला में आए थे। वरना बाकी समय पे कैसे होता है कि अगर नरसिंह भगवान आ रहे हैं तो नरसिंह भगवान का जो भक्तों का समुदाय है वही उस समय अवतार लेता है, जन्म लेता है, प्रहलाद जी एट ऑल। और वामन देव आए तो वामन देव का अपना एक भक्त समुदाय है, वो उस समय जन्म लेते हैं। कुर्मा आए तो कुर्मा के अपने भक्त हैं, मत्स्य अवतार के अपने भक्त हैं, जितने जितने राम अवतार के अपना भक्त अपने भक्त हैं, वो केवल उस समय आते हैं, बाकी भगवान के किसी अवतार में आते नहीं है वो, क्योंकि वो उनके ही भक्त हैं। लेकिन गौरांग महाप्रभु की लीला में भगवान के जितने भी अवतार हो गए, जितने भागवत में दिए हैं नहीं दिए हैं बाकी जगह पे हुए, वो सभी के जितने भक्त हैं वो सब लोग भेष बदल बदल कर आए थे उसके अंदर। ऐसे प्रहलाद जी तो वासुदेव दत्त बनकर आए थे, ऐसे बहुत लोगों का वर्णन है। तो उन सारे भक्तों को भगवान ने उनके उनके भक्ति के अनुसार दर्शन दिया। जैसे मुरारी गुप्ता, हनुमान जी मुरारी गुप्ता बनकर आए थे तो उनको प्रभु रामचंद्र का दर्शन दिया उन्होंने, कुछ लोगों को श्री कृष्ण बलराम का दर्शन दिया, कुछ लोगों को राधा कृष्ण का दर्शन दिया, कुछ लोगों को वराह रूप का दर्शन दिया, ऐसे। और शुरुआत कहाँ से किया, दुखी जो श्रीवास पंडित के घर पे गंगा जी का केवल पानी भर के दिया करती थी, ये पूछती नहीं थी कि इतनी बार क्यों मंगाते हो गया ना पूजा अभी, ऐसे नहीं, जितनी बार बोला उतना लेके आती थी। पर्पस क्या है मालूम नहीं, श्रीवास पंडित की मैं नौकरानी हूँ, मुझे बोला है और एक घड़ा लेके आओ तो और एक घड़ा लेके आना है, और एक दिन दो दिन नहीं पूरा जिंदगी भर वही करती रही हूँ। तो सबसे पहले भगवान जब वो आवेश में आ गए ना, भगवान के आवेश में, तो पहले दुखी को बुलाओ, श्रीवास दुखी को लेके आओ, दुखी चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लो और आंसू बहाओ। तुरंत उसके आंखों से आंसू बहने लगे, आज से तुम्हारा नाम सुखी। सुखी ऐसे गदगद हो गए, ऐसे भाव से कांपने लगी। क्या सीखते हम लोग इससे, क्या पोजीशन था सुखी का, दुखी का, कुछ भी पोजीशन नहीं, ना कोई साधना कर रही थी वो, लेकिन एक परम श्रेष्ठ वैष्णव की सेवा में थी वो, शरणागत भाव में थी, बिना पूछे दिन भर पानी ला के दिया करती। तो सबसे पहले उसको कृपा देकर महाप्रभु ने दिखाया कि मेरे दृष्टि से कोई बड़ा और छोटा नहीं है, मैं सबके हृदय का भाव देखता हूँ, और खास करके मेरे भक्त की जो सेवा करता है उसको मैं पहले देखता हूँ। देखो कितने बड़े बड़े थे, हरिदास ठाकुर थे, अद्वैत आचार्य थे, उसमें कौन नहीं थे, से महान दिग्गज लोग थे, जो माँ विष्णु स्वयं आए थे अपना काम छोड़कर छुट्टी लेकर अद्वैत आचार्य बनकर। देखो आप सोचो इतना बड़ा काम करते हैं, दृष्टिपात करके सृष्टि का निर्माण करते हैं, वो भी वो छोड़ के आए थे इधर। ऐसे बड़े बड़े दिग्गज, नारद मुनि अपना भ्रमण करने का काम छोड़कर श्रीवास पंडित बनकर बैठे उधर, मुरारी गुप्ता हाँ राम भगवान की सेवा में थे वो, मुरारी गुप्ता बनकर इधर लीला कर रहे हैं महाप्रभु चैतन्य के साथ में, इतने बड़े दिग्गजों को छोड़कर सबसे पहले दुखी को कृपा दिया भगवान ने। तो उस लीला में एक के बाद कृपा कर रहे हैं, बोलते श्रीधर श्रीधर श्रीधर, सब लोग यहां वहां देखने लगते हैं, कोई पीछे से आएगा कि आगे से आएगा, कौन कौनोज। ये एक और एक विशेष बात है कि हर रोज बाल लीला में वो श्रीधर के पास जाते थे, लेकिन किसी भी निमाई के पार्षद को पता नहीं था कि ये श्रीधर कौन है और जा कहां रहे। टोटली अ कॉन्फिडेंशियल अफेयर ऑल थ्रू आउट द टाइम, सारे समय के लिए ये गुप्त बात थी कि ये श्रीधर के पास उधर सीमांत द्वीप में जा रहे हैं और रोज घंटों घंटों लीला कर रहे हैं और पत्ते लेकर भाग रहे हैं वहां से, तो किसी को पता नहीं था। अभी ये देखो जो है ना पंचतत्व जो है ना वो फेमस है ना, सबको मालूम है ना, श्रीवास पंडित है, गदाधर है, उसके अंदर सबको है और सबको पता है उनके साथ में कहाँ कहाँ के फ्रेंड है उनके, सब पता है उनको, लेकिन इनमें से किसी को पता नहीं श्रीधर कौन है, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। फाइनली भगवान को पूछते हैं, भगवान कौन है ये श्रीधर? तो कहते हैं यहां से सीधे चले जाओ सीमांत द्वीप की ओर। सीमांत द्वीप पहुंचने के बाद में दाहिनी ओर मुड़ो और बीच जंगल में जाओ और जहां पर भी भगवान के नाम की आवाज सुनती हो वही श्रीधर का घर है, ऐसा एड्रेस होना चाहिए, है ना? नहीं तो कैसे बोलते हैं, आप कहां रहते हो? वो पुष्पा बिल्डिंग के सामने। पुष्पा बिल्डिंग किधर है? हमारे घर के सामने। दोनों कहां रहते हो? एक दूसरे के सामने। ये बढ़िया एड्रेस है, जहां पर भगवान के नाम की पुकार सुनाई पड़ रही हो वहां पर श्रीधर रहता है। सब लोग है ना, इतना उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसे महाप्रकाश के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीधर को पुकार रहे हैं। कौन है वो श्रीधर? ऐसा नहीं सोच रहे कौन है ये श्रीधर, हमारे होते हुए इस श्रीधर को पुकार रहे हैं भगवान, इसे ईर्ष्या नहीं कर रहे वो कि ऐसे सब चीज में हमारे को पुकारने के बजाय श्रीधर को पुकार रहे हैं। कौन है ये श्रीधर, बीच में क्यों उसका नाम लिया जा रहा है? कभी देखा नहीं, कभी आन नहीं, आज नहीं, आगा नहीं, पीछा नहीं, किसका पता नहीं, ये सडनली इधर बीच में कैसे आ गया? नहीं, सबको मन में एक ऐसा कृतज्ञता का भाव आया, ऐसा आदर का भाव आया, रिस्पेक्ट का भाव आया, वंदन का भाव आया कि ऐसा कौन है वो मान भक्ति भक्त जो हमको पता नहीं, पता होना चाहिए, आज मौका मिल रहा है, भागो उसको देखने के लिए। सब भाग रहे हैं उनको देखने के लिए, झुंड भाग रहा है पूरा सीमांत द्वीप की ओर, जंगल में भाग रहे हैं। तब उनको आवाज सुनाई पड़ती है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक फटा पुराना रास्ता मिट्टी वाला, एक फटी पुरानी झोपड़ी जिसके छत में 500 होल है, उसके ऊपर एक वेलू चल रहा है, उसके अंदर एक पम्पकिन लगा हुआ है, हाँ उसमें कोई ऐसा ना प्रवेश भी नहीं करना चाहेगा, इतनी गंदी झोपड़ी, मुड़ के भी कोई देखेगा नहीं उसके ऊपर चलते हुए कि कौन है भाई इसके अंदर, इतना गरीब की झोपड़ी थी वो। उधर से जब आवाज़ आ रही तो लौह चुंबक में कैसा होता है ना, लोहा कैसे भागता है उसकी ओर, ऐसे भाग गए सब भक्त उसके अंदर और देखा तो जप कर रहे हैं श्रीधर खोलवेचा। सब लोग बोलते हैं श्रीधर आप ही हो? हाँ मैं श्रीधर हूँ। श्रीधर आप ही हो? अरे महाप्रभु बुला रहे हैं आपको, महाप्रभु बुला रहे हैं। धाड़ करके बेहोश हो गया वो, तो महाप्रभु मुझे बुला रहे हैं, मुझे क्यों बुला रहे? वर्णन करते हैं ना अभी, महाप्रकाश भाव में वो भगवत दर्शन दे रहे सबको अपने अपने भाव के अनुसार, और ऐसे हुआ वैसे हुआ, दुखी को बुलाया ऐसे किया वैसे किया, अभी आपको बुला रहे हैं, बेहोश हो गया उधर ही। तो बेहोश अवस्था में उसको उठाकर सब लोग लेके आए, ऐसा नहीं कि एम्बुलेंस मंगाया, गाड़ी मंगाई, बैलगाड़ी मंगाई, घोड़ा गाड़ी मंगाई, नहीं, प्रेम से उठा के लेके गए उसको। किधर लेके गए? कहाँ लेके गए? श्रीवास आंगन में, वहां पर चल रहा है ना लीला महाप्रकाश की, सुभाष के घर पे लेके, बेहोश ही थे, बेहोश लाकर रख दिया जमीन पर। सब देख रहे हैं ये श्रीधर है, ये श्रीधर है, ये श्रीधर है, ही श्रीधर, इसका भगवान पुकार रहे हैं, बेहोश है वो। चलो भगवान की ओर देख रहे हैं, तो गौरा महाप्रभु बोलते हैं श्रीधर उठो श्रीधर, झट से उठ गए, भगवान को देखकर वापस गिर गए कि मेरे पास जो केले के पत्ते, केले के फल फूल दोना, स्टेम चोरी करने को आते थे, यही है वो भगवान है, ये भगवान मेरे घर पे चोरी करने आते थे, वाद विवाद करने घंटों घंटों बिताते थे, यही है वो। गिर गए वापस, अश्रु बह रहे उनके आंखों से, गदगद होके गिर गए, कांप रहे। फिर भगवान कहते हैं उठो श्रीधर, उठो, बोलो, मैं आज देना चाहता हूँ आपको, मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मांग लो, मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं बहुत ऋणी हूँ आपका। तो क्या मांगू, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। बोला ऐसे क्यों कहते हो श्रीधर, मैं देना चाहता हूँ, बोलो, मैं तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति करा दूँ। वैकुंठ जाके मैं क्या करूँगा, आप बोलेंगे ऐसा? बस इमेजिन, एक एक बात मैं बोलूंगा ना, आप सोचो कि अगर आपको वो बात बताई जाए तो आप क्या जवाब दोगे। फिर कहते हैं, पहले बोलते हैं मुक्ति प्राप्त करा दूं, मुक्ति करके मैं क्या करूंगा, तो वैकुंठ में निवास दूंगा आपको, क्या करूंगा वैकुंठ में निवास देके। बोले अष्ट सिद्धि दूं आपको मैं, अष्ट सिद्धि, लगीमा महिमा अनिमा प्राप्ति, एक सिद्धि ऐसे दूंगा आपको कि आपका खुद का एक प्लैनेट बन जाएगा, लोक। बोले मेरे खुद का लोक बनाकर मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू। हम लोग एक एकड़ लैंड के लिए जिंदगी भर प्रयास करते हैं, एक एकड़ लैंड हो जाए मेरी, लोन लेकर क्या क्या करते हैं। कोई बोलेगा आपको मैं एक प्रीमियम देता हूं एक एकड़, तो कैसे झपक के पड़ोगे हम, है ना। बोलते क्या करूंगा मैं, उसके तो मैं आपको वैकुंठ का स्वरूप दूंगा और मेरे साथ में निवास दूंगा। नहीं भगवान, मैं यही ठीक हूं, आपको धन दूंगा, आपको ऐश्वर्य दूंगा, सुंदर शरीर दूंगा। इसका मतलब मालूम है क्या है, जो जो भगवान को छोड़कर इस दुनिया में हम चाहते हैं वो सब कुछ उन्होंने उसको ऑफर किया, धन दौलत ऐश्वर्य सौंदर्य बल कीर्ति के साथ, बाद में मोक्ष, बाद में वैकुंठ निवास, बाद में अष्ट सिद्धि, बाद में पंचमुक्ति, हाँ सब कुछ दिया उसको। तो पता है उन्हें क्या कहा, बोलता है इट्स सिंपली अ डिस्टर्बेंस, मतलब इन सबको प्राप्त करना मतलब एक तकलीफ है, एक परेशानी है। बोलते इतना मुझे ना, ये जब मैं बार बार पढ़ता हूँ इतना आश्चर्य होता है सुनकर, ये परेशानी कैसे हो सकती है जिसके लिए भगवान को छोड़कर दुनिया में आए हैं, चाहते भोगना चाहते, बोलते ये सब परेशानी है, ये केवल श्रीधर ही बोल सकता है, नोबडी एल्स कैन से दिस। अभी ना भगवान डेस्परेट हो गए कि क्या करूं भाई इसको, मैं देना तो है मुझे, ले तो नहीं रहा है, इतना निरपेक्ष भक्त है ये, इतनी बड़ी बड़ी बातें जिसके लिए साधु लोग तपस्या करते हैं, इतने बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, कर्म कांड करते हैं, उपासना कांड, ज्ञान कांड, सिद्धि कांड, इतने तपस्या करके चमत्कार करना चाहते हैं, कोई मुक्त होना चाहता है, कोई विरक्त होना चाहता है, कोई कुछ फर्म का फल चाहता है, कोई स्वर्ग निवास चाहता है, ये सब मैं उसको दे रहा हूँ, अभी क्या दूँ मैं, मेरे पास अभी क्या बचा है, सब कुछ तो मेरा उसको मैंने ऑफर कर दिया, ये ले तो नहीं रहा है लेकिन मुझे देना भी है, क्या दूँ उसको मैं। तो ये श्रीधर मैं विनती करता हूँ आपको, आप मांगो मुझसे, मुझे खुशी होगी अगर आप मांगोगे तो। हाँ, इस बात पर एक घंटी बजती है उसके मन में कि मैं अगर मांगूंगा तो इनको खुशी मिलेगी, सोचने लगता है। अब बोलता है आप ना जन्म जन्मांतर तक हर रोज मेरे पास आकर वही आर्गुमेंट करते रहिए और वही मेरे केले उठाकर भागते रहिए, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। भगवान पुकारते हैं श्रीधर, मतलब भगवान इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि इतना निरपेक्ष भक्त है ये कि इसको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अगर खुशी मिल रही है रोज आपसे वाद विवाद करके केला चुरा के, तो वो करना चाहता है, वो केवल मेरे खुशी के लिए जीना चाहता है, बार बार जन्म लेकर आना चाहता है, उसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, गोलोक निवास भी नहीं चाहिए, हर जिंदगी के बाद उसको दोबारा आना है और मैं आऊँगा और मैं वाद विवाद करूँगा और उसके केले के पत्ते दोना सब छीन के ले जाऊँगा फ्री में, जिसमें मुझे खुशी मिलती है उसी में इसको खुशी है और वही चाहता है वो। ऐसा श्रीधर है, ऐसा भक्त है। हाँ, भक्त हो तो ऐसा होना चाहिए। मेरी ऐसे हृदय से प्रार्थना है भगवान को कि मुझे श्रीधर से मिलना है, एक बार कम से कम एक बार मिलना है। सच अ पर्सनैलिटी है ना, आई एम लॉन्गिंग टू मीट श्रीधर एक्चुअली। तो इसके बाद में फिर उन्होंने कीर्तन शुरू किया महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु ने। और कीर्तन शुरू करने के बाद में वो बात सब फैलने लगी ना सब जगह पे, और सेवा सांगन में जोरदार कीर्तन कर रहे दिन में। तो उसके बाद में फिर एक दिन भगवान ने कहा कि रात में क्या करते हैं हम लोग, बोला कुछ नहीं करते, रात में कीर्तन करना चाहिए इतना समय सो के बिताते हैं, इतना वेस्ट कर रहे हैं। तो हम अगर हम उस जगह होते बोलते भगवान बस ना बस भी करो ना, अभी इतना दिन तो जाते हैं, दिन भर तो चलते रहते हैं, रात को नींद भी आप छीन लोगे तो कैसे चलेगा। ऐसे बाय द वे एक भी भक्त ने कहा नहीं कहा, उन्होंने कहा यस यस हरि बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल, यस रात में भी करेंगे। उस दिन से रात में शुरू हुआ क्लोज डोर कीर्तन, बंद दरवाजे वाला। दिन वाले में सबको एंट्री, रात वाले में केवल गिने चुने लोगों को, पासधारियों को, कूपनधारियों को। तो उसमें क्या हुआ, उसमें ना फिर बहुत ब्राह्मणों को, वहाँ के जो है ना कर्मठ ब्राह्मण थे ना वहाँ के कर्मकांडी ब्राह्मण, उनको भी आना था, कोई सिद्ध बाबा उनको भी आना था, कोई इसको भी आना था उसको भी आना था, जो प्रतिष्ठित लोग थे वहाँ के, जिनको वैसा लगता था कि हमको सम्मान से आना चाहिए इसके अंदर, तो उनको सबको रोका गया। तो वो हर्ट हो गए कि अंदर में जो चल रहा है हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो उनका ईगो जब हर्ट हो गया तभी उन्होंने क्या किया, इसको रोक रहे हम लोग। तो उसमें चांद काजी नाम का वहाँ पर काजी था, वैसे वो कंस का अवतार है, और वो उसका राज्य था वहाँ पर, रूल था उसका प्रशासन। तो ये हिंदू लोग, पंडित लोग, कर्मकांडी लोग उसके पास जाके कंप्लेंट करने लगे। देखो हमारा ना हिंदुओं का यही प्रॉब्लम है, ये आज नहीं ये सदियों से चलते आ रहा है। मराठा के समय भी यही किया, मराठा लोगों ने ही जाकर आदिलशाह और औरंगजेब की नौकरी की और सारे राज जो है वो सब उनको बताए, सारे गुप्त जगहें बताई और सब जगह जाकर खुद के संगन मत से हमला करवाया। यहाँ के लोग वहाँ फितूर हो गए पैसे के लिए, केवल पैसे के लिए, ओनली फॉर मनी, मनी एंड पोजिशन एंड पावर, इसके लिए दुश्मनों के भी चरणों में जाकर दंडवत किया उन्होंने। तो हिंदू धर्म वाले, हिंदू भगवान का नाम लिया जा रहा है तो ईगो हर्ट हो गया, इसलिए मुसलमान लोगों के पास जाके कंप्लेंट दिया कि ये लोग ऐसा चिल्लाते हैं, हमारे धर्म में कहीं भी लिखा नहीं है कि चिल्ला चिल्ला के भगवान को पुकारना चाहिए, ये हमारे धर्म की व्याख्या को भ्रष्ट कर रहे हैं, सब पाखंडी लोग हैं, रात को जोर से चिल्लाते हैं, हमको पक्का विश्वास है कि रात को ये बंद दरवाजा क्यों करते हैं, औरतों को लेकर आते हैं, शराब पीते हैं, उनको बलात्कार करते हैं और वो उसमें चीखते हैं लोग, सब भयंकर पाप हो रहा है यहाँ पर, बंद दरवाजे में सारे लोग इकट्ठा होकर क्या क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं और ध्रोम कर रहे हैं भगवान के नाम का, हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, कहीं भी लिखा नहीं है ऐसा। तो चांदकाजी को भागना चाहिए था हिंदुओं के खिलाफ कुछ करने के लिए। तो आ गया एक दिन और सबको धमकी देकर चला गया। फिर अगले दिन वापस कीर्तन हुआ, नहीं पहले दिन वो नहीं आया, पहले दिन उसने सैनिक भेजे, सिपाहियों को भेजा और वो आके धमकी देके चले गए, ए मार दूंगा सबको, बंद होना चाहिए सब कुछ, बंद चाहिए बंद, कल से बंद चाहिए। तो फिर भी उन्होंने कीर्तन किया अगले दिन। तो चांदकाजी खुद आया और चांदकाजी खुद आके चलते हुए कीर्तन में मृदंग किसी का छीना जो बजा रहा था और मृदंग को तोड़ दिया उसने कुल्हाड़ी से। तो एकदम सब रुक गए, बोले मैं आखिरी बार बता रहा हूँ कीर्तन बंद होना चाहिए, आवाज़ नहीं आना चाहिए बिल्कुल, आज मृदंग तोड़ा है कल सर तोड़ दूंगा सबके, ऐसा करके चला गया। जब वो जा रहा था, आपको पता है ना श्रीवास आंगन कहाँ है और चांदकाजी और सीमांत द्वीप कहाँ पर है, तो वो जब निकला वहाँ से अपने घर जाने के लिए, वहाँ से चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे, गौरांग महाप्रभु आ रहे थे, दोनों की नज़र भेंट होती है, बोलते कुछ नहीं है, महाप्रभु उसको देखते हैं, वो महाप्रभु देखते हैं, चले जाते हैं। और जैसे ये घटना होती है, श्रीवास पंडित अपने घर पे तुरंत नरसिंह भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगते हैं, बचाओ भगवान बचाओ। ऐसे नहीं कि वो खुद मरने वाले इसलिए डर रहे हैं, वो ये भक्तों को मारने वाली बात है ना, ये खुद मरने को तैयार है लेकिन भक्तों को कष्ट होगा इसलिए नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान बचाओ, ऐसे डेस्परेटली प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय गौरांग महाप्रभु उसके दरवाजे पे आते हैं, श्रीवास क्यों डर रहे हो, मेरे होते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको, मैं सब संभाल लूंगा। दिन की बात थी ये। तो फिर अगले दिन चैतन्य महाप्रभु सबको बुलाते हैं, सभी गांवों से बुलाते हैं, सब वैष्णवों को बुलाते हैं, सब लोग आओ, शाम को आना है आपको, मशाल लेकर आना है, अग्नि की मशाल, और मृदंग लेकर आना है, करताल लेकर आना है, और हम लोग अपने श्रीवास आंगन से सब लोग कीर्तन करते हुए पूरे बड़े जुलूस के अंदर लाखों लोगों की संख्या में कीर्तन करते हुए चांद काजी में घर में जाएंगे और उसको पूछेंगे, हमारे कुछ प्रश्न हैं उसको पूछेंगे जाकर। तो जब महाप्रभु जो आह्वान करते ना, तो पहली बार रोड पे कीर्तन हुआ, तब तक तो श्रीवास के घर पे चल रहा था दिन में और रात में। उसके बाद उसके उस दिन सबसे पहली बार रास्ते पर कीर्तन का जुलूस निकला, जिसको हम हरिनाम संकीर्तन का जुलूस कहते हैं। आप सोच सकते हैं जब सूर्यास्त का समय हुआ ना, हजारों लाखों करोड़ों मशाले जली और उसका सारा प्रकाश सारा नवद्वीप के रास्तों को गंगा जी को प्रकाशित कर गया, और सब लोग ऐसे ना, जैसे कहते हैं ना, अभी समझो अभी हम लोग में से कोई डरपोक लोग तो लोग हैं समझो, बहुत डरते हैं, लेकिन जब डरपोक लोग जब बड़ी संख्या में जमा होते हैं ना, तो भी हिम्मत वाले बन जाते हैं, है कि नहीं? यू गेट द कॉल्ड एज पावर ऑफ मॉब। जब आप एकत्र होते हैं ना, तो एकत्रता होने की एक अपने आप पावर होती है, उसमें सब लोग कमजोर इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन जब इकट्ठा हो गए तो एकदम पावरफुल हो जाते हैं, इकट्ठा होने में ही शक्ति है ये। तो सब लोग ऐसे ना, जो पहले इनके धमकी से और उनके ऐसे डर रहे थे, कांप रहे थे, वो सब बोलते हैं मारो मारो काजी को, मारो किल द काजी, से चिल्ला रहे हैं सब लोग। जो लोग ऐसे एकदम भागते थे डर के, वो लोग भी चिल्ला रहे हैं, सबके बीच में खड़े होकर, मशाले जल रही है, हजारों मृदंग बज रहे हैं, हजारों करताल बज रही है, जोरदार कीर्तन चल रहा है और जा रहे हैं सब लोग। तो सैनिक लोग जो जिनका काम था ना देखने का, पहरा देखे कीर्तन ना हो जाए, वो भाग गए वहां से देख के, इतने लोगों के सामने क्या करेंगे सिपाही लोग। जाके काजी को बताया, काजी महाराज देखो कितने लोग आ रहे, पता नहीं करोड़ों लोग आ रहे हैं, आपके घर की ओर ही आ रहे हैं, मैंने सुना है उनको, सब लोग भाग रहे हैं आपके घर की ओर, भगवान का नाम पुकार रहे हैं। तो काजी बोला जाओ रोको उनको, मैंने कहा था ना कीर्तन नहीं करना चाहिए, कैसी हिम्मत हो रही उनकी। और लोगों को भेजते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि हम लोग तो 5-50 लोग हैं, तो हजारों करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो क्या करते हैं कुछ लोग हैं ना, वो कीर्तन में भाग लेते हैं अपना कपड़ा होता ना कपड़ा, वो बांधने का सर पे, उसको ना पूरा बांध के दाढ़ी वाड़ी कवर करके ऐसे पूरा बुरखा बना देते हैं और चले जाते हैं उसके अंदर और भाग लेते हैं, भाई वी आर वन ऑफ यू ओनली। बाकी लोग आते हैं ना, उनकी दाढ़ी जलने लगती है, कीर्तन में आते ही दाढ़ी में आग लगती है अपने आप ही, तो आ दाढ़ी को बुझाने में लगे हुए हैं, डर जाते हैं, वो भी लग जाते हैं उसके अंदर, और बचे हुए भाग जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, बोले यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। सारे सैनिक फेल हो गए हैं, कुछ सैनिक घुस गए, बाकी सब गायब हो गए हैं। और फिर वो दूर की जो आवाज़ है ना, जो दूर सुनाई पड़ रही थी, पास सुनने लगी और पास में आने लगी और पास में आने लगी और कान बैठने लगे, उसके वजह से इतनी ज़ोर से आवाज़ आने लगी, तो ये उसके घर के सेकेंड फ्लोर पर भाग गया काजी, ऊपर वाले कमरे में जाके छुप गया, दरवाज़ा बंद कर दिया। उधर सिपाही अंदर गए, मतलब दरवाजे के बाहर खड़े होने के बदले में कड़ी लगा के अंदर खड़े हो गए और सब लोग जैसे इकट्ठा हो गए ना उनके घर के आंगन में, जोर से चिल्लाने लगे काजी को मार डालो, काजी को मार डालो, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। फिर सब लोग कीर्तन करने लगते हैं, महाप्रभु आगे जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई जवाब देता नहीं, तो पुकारते हैं काजी दरवाज़ा खोलो, हम आपको मिलने आए हैं, ये भी कोई तरीका है, हम आपके को मिलने आए, आप लोग अतिथियों का स्वागत भी नहीं करते, दरवाज़ा बंद करके ऊपर बैठे हुए हो। तो बहुत डरा रहता है, वो डर के नीचे आ जाता है, दरवाज़ा खोलता है, बोलता है कि तुम्हारे जो माँ के पिताजी है ना, वो मेरे फ्रेंड है, हम बचपन के दोस्त हैं, बोलते उसी गांव से हूँ मैं, तो तुम मेरे भतीजे हो गए ना, तुम मेरे भतीजे हो गए तो इतना इतना लोगों को लेकर चिल्लाते हुए क्यों आ रहे हो? बोले मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं दरवाजा खटखट रहा हूँ, आप दरवाजा खोलते क्यों नहीं हो? अरे भतीजे हो, मैं चाचा में प्रेम होना चाहिए। हाँ, बोले प्रेम करने को ही आया हूँ मैं। फिर बोलते आप लोग अपने धर्म में इतने 5 बार अजान लगाते हो, भगवान को अल्लाह को पुकारते हो, आप अल्लाह का नाम लेके पुकार रहे हो, हम भी और उसी भगवान का नाम पुकार रहे हो, तो आप लोग रोकते क्यों? सब धर्म में लिखा है भगवान का नाम लेना चाहिए, हर एक धर्म में अपनी भाषा में लिखा हुआ है, हम अपने भगवान का नाम ले रहे, आप अपने भगवान का नाम ले रहे, आप फिर रोकते क्यों हमको लेने के लिए? तो कुछ नहीं बोल रहे। और मैं आपको बैठ से आपको चर्चा करना चाहता हूँ, बैठना चाहते तो बैठ गए। आपके कुरान में हम लोग माँ और पिताजी को क्यों मारते हो? मतलब आपके कुरान में लिखा है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन आप लोग तो माता पिता का वध करते हो, तो समझ में नहीं आया कुछ, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बोले तो पिताजी तो बैल है, जो खेती में वो हल चलाते हैं ना उसको लेकर, तो वो धान उगाने में मदद करता है, जो अपने को भोजन मिलता है उससे, और गाय दूध देती है जो अपने को पोषक है, तो गाय माता हो गई, बैल पिता हो गया, तुम लोग उसको ही मार के खाते हो, ऐसा क्यों करते हो आप लोग? तो बोलते आपके भी धर्म में अश्वमेध यज्ञ गोमेध यज्ञ होता है ना, आप लोग गाय और हाथी घोड़े को डालते हो ना अग्नि के अंदर, वध नहीं करते हो क्या आप लोग? तो सब महाप्रभु उसका वर्णन करते हैं कि अश्वमेध और गोमेध यज्ञ जब होता है तो ब्राह्मण लोग बुढ़े गायों को और बुढ़े हाथी घोड़ों को मंत्र बोलकर जब अग्नि में अर्पण करते हैं तो उसी आत्मा को नया गाय का शरीर प्राप्त होता है जवान, और उस घोड़े को नए घोड़ा जवान शरीर प्राप्त होता है, पुनर्जीवन देते हैं उसको। लेकिन कलयुग में ऐसा कोई योग्य ब्राह्मण नहीं है जो मंत्र उच्चारण करे और गाय को और घोड़े को अर्पण किए हुए नया शरीर प्राप्त हो, इसलिए कलयुग में गोमेध अश्वमेध यज्ञ करना मना है। ऐसे बहुत चर्चा करते हो शास्त्र के अनुसार। तो फिर उन्होंने कहा कि आप कीर्तन को रोकते क्यों? तो कहते मैं अभी आपसे कीर्तन नहीं रोकूंगा, हालांकि जब मैं कल मृदंग तोड़कर आया तो तब से मैंने कीर्तन का विरोध करना बंद कर दिया, सैनिकों को आदेश दे दिया इसको बंद करो, मतलब बंद करने के लिए मत जाओ, चुप रहो सब लोग, क्योंकि जब मैं कल सवेरे मृदंग तोड़कर आया और रात को सोया तो एक अद्भुत जीव मेरे सामने आया रात को, वो आधा मनुष्य आधा सिंह का चेहरा था उसका, इतना क्रोध में था, इतना लाल लाल आंखें थी, इतना गर्जना कर रहा था कि मैं ऐसे नींद में ही कांप करके पसीना आ गया मुझे वहां पर ही, और जैसे मैं ना थिस गया, मैं मतलब मैं उठ ही नहीं पाया, हिल नहीं पाया वहां से, मुझे भागना था वहां से, लेकिन मैं गर्भगणित हो गया, यानी स्टंड हो गया पूरा, अरे हाथ पाँव ही चलने में, मैं बिस्तर पे ही पड़ा रहा, मैं भीग गया पूरा पसीने से, डर के मारे कांप रहा था मैं, और वो अद्भुत जीव जो था वो सीधे मेरे छाती पर आया, लकाजी वो सब मेरे भक्त हैं, और अगर दोबारा तुमने जाकर आज मृदंग तोड़ा है, दोबारा जाकर उनको रोकोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा छाती फाड़ दूंगा, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारे सारे वंश को नष्ट कर दूंगा, समझ रहे हो तुम? ऐसे करके उस जीव ने, काजी बता रहे हैं, मेरे छाती पे हाथ डाला और पूरा छाती मेरा फाड़ दिया, और मैं देखता रह गया। फिर उसने अपना कोट निकाल के दिखाया, देखो उसके मार्क अभी भी लगे हैं, अभी भी बुझे नहीं है वो नरसिंह भगवान थे। उन्होंने जाकर काजी को वार्निंग दिया, डेयर यू डिस्टर्ब माई डिवोटीज, याद रखना दोबारा मेरे भक्तों को कभी कष्ट दिया तो जिंदा नहीं रहोगे, कहीं दिखोगे भी नहीं इसके आगे। तब से मैंने बंद कर दिया था कल ही, और आज मैं ऐलान करता हूं कि आप भगवान हो, मैं देख रहा हूं आपको, मैं समझ रहा हूं ये कि आप स्वयं हमारे अल्लाह हो, स्वयं परम भगवान हो, जिसको हम पूछते हैं वही आप हो, मूर्त स्वरूप में मेरे सामने खड़े हो। मैं ऐलान करता हूं कि आज के बाद ना के ना मैं मेरे जीवन में और मेरे बाद में मेरे वंशज जितने भी होंगे वो कभी भी हरिनाम संकीर्तन का विरोध नहीं करेंगे, और मेरे पूरे प्रशासन में सब जगह हरिनाम को प्रोत्साहन दिया जाएगा, कहीं भी विरोध नहीं किया जाएगा। उस समय गौरांग महाप्रभु ने चांद काजी को गले लगाया। जैसे गले लगाया वो गदगद हो गया, उसके आंखों से प्रेम से अश्रु बहने लगे। गौरांग महाप्रभु ने चांद काजी को अपना बना लिया और फिर सब लोग लौट के आए। जब यहां पर ये वाद जो संवाद हुआ वो समाप्त हुआ, तो उसके बाद वही कीर्तन मंडली लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के घर पे गए। अभी तो सबको पता थे ना वो कौन है, तो भगवान चांद काजी के घर से वो पूरी मंडली कीर्तन करते करते श्रीवास आंगन में गए। और श्रीवास आंगन में गए और वहां पर जोरदार कीर्तन किया। श्रीवास ने भी भाव विभोर होकर उसमें भाग लिया। जब कीर्तन रुका ना, तो उसके घर के झोपड़ी के बाहर एक टूटा फूटा, मतलब जिसको बहुत मार लगा हुआ है कई जगह से, ऐसे एक कॉपर का पॉट था, जानते हैं, लूटा, कई जगह पर उसको मार लगा हुआ है। और उसमें वो पानी भी पीते थे, टॉयलेट को भी लेके जाते थे, और ये भी करते थे और वो भी करते थे, सारा मल्टीपल पर्पज पॉट था वो। उसमें कुछ पानी था। गौरा महाप्रभु गए, सीधे वो पॉट उठाया और उसमें से घटा 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 पानी पिया सबके सामने। और सीधा बोला, भगवान क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये सबसे गंदा घिलौना पॉट है मेरा, इस पात्र में मैं सब कुछ करता हूँ, ये बड़ा अपवित्र अशुभ पात्र है, इसमें इसको क्यों ले रहे हैं आप। तो कहते हैं, मैंने कहा था ना कि एक दिन मैं आपका सारा ऐश्वर्य का भांडा फोड़ दूंगा, ये पात्र जो है इससे जो जल था इसके अंदर, वो जल प्राप्त करके मैंने आज कृष्ण की भक्ति का प्राप्ति किया हुआ है। आई हैव अटेंड द लव फॉर कृष्णा बाय ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दिस पॉट ऑफ योर्स। तो वो बेहोश हो गया उधर, ही जस्ट कुडंट एक्सेप्ट, कुडंट टॉलरेट कि क्या हो रहा है, उसको वो स्वीकार नहीं कर पाया, बेहोश होकर गिर गया। वो बार बार महाप्रभु के चरणों में गिरा। वैसे तो उसके ऐश्वर्य का प्रदर्शन तो भगवान ने उधर ही किया था, क्या नाम उसका, महाप्रकाश लीला में, लेकिन दोबारा एक बार सब भक्तों को लेके जाकर भगवान ने श्रीवास के उस टूटे फूटे पात्र से जल पिया। और ये बताया, जो सत्यव्रत मुनि भी बताते हैं उस दामोदर अष्टकम में, कि जो लोग समझते हैं कि मैं ऐश्वर्य का भूखा हूँ, जो लोग समझते हैं कि मैं तपस्या से प्राप्त होता हूँ, जो लोग समझते हैं कि मैं ज्ञान प्राप्त करके प्राप्त होता हूँ, जो लोग समझते हैं कि मैं सिद्धि से प्रभावित होता हूँ, जो लोग समझते हैं कि फलाना चीज़ों में प्रभावित होता, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं केवल भक्ति से प्रभावित होता हूँ, मैं केवल प्रेम से प्रभावित होता हूँ, मैं और किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होता। इस तरह से भगवान ने श्रीधर के आंगन में विश्राम किया। उधर विश्राम स्थली भी कहा गया, क्योंकि ये सब करने के बाद भगवान ने वहाँ पर विश्राम किया बहुत देर तक, और फिर भगवान लौट के आए। उसके बाद चांद काजी का देहांत होता है, कुछ समय के बाद वो शुद्ध भक्त बन जाता है। उसका देहांत होता है तो उसी सीमांत द्वीप के एरिया में उसको कब्रस्तान में समाधि, मतलब दे देते हैं उसको, जो भी बोलते हैं वो लोग। तो कहते हैं कि जब उसका शरीर वहाँ पर रखा गया और उसका कब्र बनाया गया, उस कब्र से अपने आप ही दो पेड़ पैदा हो गए, अपने आप ही, क्योंकि चांद काजी को लोग प्रेम से चंपा पुकारते थे, चंपा निक नेम था उसका। तो एक नीम का पेड़ आया और एक चंपा का पेड़ आया एक ही साथ में उनके शरीर से, और आज भी वहाँ पर नीम का पेड़ और चंपा का पेड़ है, चंपा के फूल आते हैं, और निमाई जो नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ था तो उनको निमाई रूप में जानते हैं। तो एक तरह से निमाई और चंपा की मित्रता के प्रतीक के रूप में वो दोनों पेड़ पैदा हो गए वहाँ पर, और आज भी बड़े विशाल, वो पेड़ 500 साल पुराना पेड़ है दोनों, और आज भी बड़ा विशाल रूप में वहाँ पर उपस्थित है, आप उसका दर्शन कर सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का अद्भुत लीलाएं बार बार केवल एक ही बात बताते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये, इनमें से किसी भी वस्तु से मैं प्रभावित नहीं होता। भक्त बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए धन चाहिए, ना मुझे स्त्री चाहिए, ना मुझे कविता चाहिए, ना मुझे ग्लोरिफिकेशन चाहिए, ना मुझे कीर्ति चाहिए, यश चाहिए, ये भक्त बोल रहा है। और भगवान भी बोल रहे हैं कि मैं ना धन से प्रभावित होता हूँ, ना सुंदर कविता से प्रभावित होता हूँ, ना ज्ञान से प्रभावित होता हूँ, हाँ ना तपस्या से प्रभावित होता हूँ, ना त्याग से होता हूँ, ना व्रत से होता हूँ, ना इससे होता हूँ, ना उससे होता हूँ। और भक्त क्या बोल रहा है, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, मुझे जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति चाहिए। और भगवान बोल रहे हैं, हाँ जन्म जन्मांतर में मैं केवल भक्ति से ही प्रभावित होता हूँ, केवल प्रेम से प्रभावित होता हूँ। यही हमको जानना है। इन सब चीज से भगवान प्रभावित क्यों नहीं होते, क्योंकि ये सब चीज उन्होंने ही हमको दिया है। जो मैंने ही दिया है वो मुझे दिखाकर आप इतराओगे, ऐड करोगे, तो फिर मैं हंसूंगा ना, अरे क्या मैंने तो दिया था आपको, मैंने दी हुई सोने की चेन दिखा पहन के इतराओगे सबके सामने और मेरे सामने भी, तो मैं बोला अरे मन में बोलूंगा अरे मैंने तो दिया था चेन उसको, वो इतना इतरा रहा है उसको। भगवान के सामने जाकर बॉडी दिखाओगे, ऐसे देखो मेरा मिस्टर यूनिवर्स का बॉडी देखो, तो बोलो बोले क्या पागल आदमी है। क्योंकि ये सब चीजें जो है ना, तपस्या, व्रत, ऐश्वर्य, त्याग, ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। आपका केवल एक ही चीज है, वो है प्रेम और भक्ति। हमारा और आपका केवल एक ही है, हृदय का भाव खाली हमारा है। वो दिखाओगे तो वो लेंगे, उसके लालायित है वो, उसको लेने के लिए तो आते हैं वो। हाँ, वैकुंठ का साम्राज्य छोड़कर आते हैं गोपियों का छाछ चुराने के लिए। अभी छाछ भी उनका ही है वो, लेकिन वो छाछ नहीं चुरा रहे, वो मक्खन नहीं चुरा रहे, वो उनका प्रेम चुरा रहे हैं जो मक्खन और छाछ में छुपा हुआ है। कोई वैकुंठ में छाछ और मक्खन की कमी नहीं है, वो छाछ के माध्यम से उनका प्रेम चुरा रहे हैं, उनका प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको अपना बना रहे हैं, उसको स्वीकार करते हुए। इसलिए भक्त लोग क्या बोलते हैं महाप्रभु चैतन्य को, गौरांगा तुमी मोरे दया न छाड़ी हो, गौरांगा तुमी मोरे दया न छाड़ी हो, अपना कोरिया रंगा चरणे राखी हो, ओ अपना कोरिया रंगा चरण राखी हो, हे गौरांगा ऐसी कृपा करो, हमेशा ऐसी कृपा करते रहो, अपना बना लो, चरणों में रख लो। एकुले ओकुले मुनि दिलु तिलांजोली, एकुले ओकुले मुनि दिलु तिलांजोली। मैंने सब तोड़ दिया है, इस कुल को, माँ के कुल को, ससुर के कुल को, पिताजी के कुल को, सब छोड़ दिया है, तिलांजलि दे दिया मैंने आपके लिए। अभी आपका बनना चाहता हूँ मैं, मुझे अपना बना लो। हाँ, अपना र बोली, मुझे अपना बना लो, अपने ही चरण में रखो। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक आया हूँ, अब मुझे ठुकरा मत देना, अपना बना लेना। हमको भी वही पुकारना है, गौरांगा तुमी मोरे दया न छाड़ी हो, मोरे दया न छाड़ी हो, अपना कोरिया रंगा
चरण राखी हो,
आज की हमारी अवस्था में हम लोग केवल यही बोल सकते हैं। ऐसी पतित अवस्था में और क्या बोल सकते हैं? इसलिए सब लोग पुकारो, बड़े प्रेम से पुकारो। उन्होंने उनकी प्राप्ति का मार्ग इतना आसान कर दिया है, सब कुछ जो प्राप्त करना है वो इस हरे कृष्ण महामंत्र में डाल दिया उन्होंने, होलसेल पैकेज। कुछ बचा नहीं है उसके अंदर, जो हरे कृष्ण महामंत्र में नहीं है ऐसा कुछ भी बचा नहीं है, सबको दे दिया है उसको, बिना भेदभाव के सबको दे दिया है। पतितों को दिया है, उन्नतों को दिया है, सभी परमांसों को दिया है, सबसे गिरे हुए लोगों को भी दिया है। केवल पुकारना बाकी है, बस केवल पुकारना चाहिए और कुछ नहीं है। इसको पुकारने से जो लोगों ने सत्ययुग में प्राप्त नहीं किया ध्यान करके, जो लोगों ने त्रेतायुग में प्राप्त नहीं किया यज्ञ करके, जो द्वापर में प्राप्त नहीं किया अर्च विग्रहों की पूजा करके, और जो प्राप्त नहीं किया उससे भी बहुत बहुत ज्यादा चीज कलयुग में केवल भगवान का नाम लेकर हम प्राप्त कर सकते हैं। वो सब मुमकिन किसने किया? गौरांग महाप्रभु ने। और ये सब बात मुमकिन किसने किया? वो श्रील प्रभुपाद जी ने। ये सब तो भविष्यवाणी तो है ही, पृथ्वी ते आचे सर्व नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबो मरो नाम, भविष्यवाणी तो हो गई है बहुत बड़ी। उसको मूर्त स्वरूप में लाया हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने, जो ठाकुर भक्ति विनोद ने देखा उधर खड़ा रहकर, अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा रहकर जलांगी के किनारे पे, कि वो जलांगी के उस किनारे पे प्रकाश आ रहा है, दिव्य प्रकाश। बाद में देखा उसमें सारे रंग के लोग, हरे देश के लोग, सारे भाषा बोलने वाले, ऊंचे नीचे ऊंचे नाटे सब लोग हाथ ऊपर उठाकर हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। दृष्टांत हुआ उनको। उसके बाद तीसरा दृष्टांत हुआ, उसमें एक अद्भुत मंदिर देखा उन्होंने, और अद्भुत मंदिर का उनको ज्ञान था कि नित्यानंद प्रभु ने ऑलरेडी घोषणा किया था कि अद्भुत मंदिर आएगा, जहां से वर्ल्ड में हरिनाम का प्रचार होगा, दुनिया भर के लोग हरिनाम वहां से प्राप्त करेंगे। वो पता था उनको, उसका दर्शन उनको हुआ उस दृष्टांत में। ये तीनों चीजों को सत्य रूप में किसने लाया? श्रील प्रभुपाद जी ने। आज उनकी कृपा से उसी जगह पर जहां पर दृष्टांत हुआ था, वहां पर काले पीले गोरे नीले सभी लोग आकर हाथ ऊपर उठाकर भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, उसी जगह पर जहां पर उसका दर्शन ठाकुर भक्ति विनोद ने किया था। वो सत्य स्वरूप में प्रयत्न पूर्वक तपस्या त्याग करते हुए, जीवन को समर्पित करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने उसको वो सत्य रूप में लाया। उनके जाने के बाद भी और विस्तार और विस्तार और विस्तार, और चाइनीज और रशियन लोग उसमें भर रहे हैं, और उसके बाद में अद्भुत मंदिर भी आ गया है। अभी हमारे जीवन का भाग्य ही हमारे जीवन में होते हुए, मुझे बताओ आप सब लोग पसंद करते जब कृष्ण भगवान यहाँ लीला कर रहे थे तब कितने लोग वहां वो होना पसंद करते बताओ? एवरीबडी वुड लाइक टू बी देयर? यस। अगर हमको मौका मिलता तो हम लोग वहां होते उस समय देखने के लिए। तो आज जब भी अद्भुत मंदिर आ रहा है, हम लोग सब लोग हैं इधर दुनिया में, कितना बड़ा भाग्य है। कुछ लोग तो चले गए पिछली पीढ़ी वाले, कुछ लोग तो आगे पीढ़ी में आएंगे तब देखेंगे, लेकिन हम लोग अभी बनते हुए देख रहे हैं उसको। कई बार विजिट किया हमने उधर, उद्घाटन में भी जाएंगे, उसके बाद में उस अद्भुत मंदिर में कीर्तन करने का भाग्य भी मिलेगा हमको निश्चित रूप से। प्रार्थना है हमारी भगवान के चरणों में कि उधर हमको कीर्तन करने को मौका मिले, भाग लेने के लिए मौका मिले। हजारों लोग एक साथ मिलकर उधर हॉल में कीर्तन कर सकते हैं। हाँ, 36 विग्रह होंगे उसमें, वो सब हमारे जीवन में हो रहा है। कभी किताब लिखेंगे तो उसमें हम लिखेंगे कि अद्भुत मंदिर बन रहा था, मैं भी था उस समय दुनिया में, है ना? इमेजिन, जैसे हम लोग पढ़ते ना कि श्रीधर था, हरिधर ठाकुर थे, अद्वैत आचार्य थे, दुखी भी थी, है ना? आज उसका नाम आ गया ना उसके अंदर कि वो भी थी दुनिया में उस समय, सबका दर्शन किया उसने। वैसे ये भी आपको दर्शन है आपके लिए, केवल प्रभुपाद जी की वजह से। उन्होंने कहा था 73 में, हाँ, अल्फ्रेड, क्या नाम उसका, अल्फ्रेड फोर्ड को, अम्बरीश प्रभु को, कि आपका सेवा ये आपको करना है। और इतना साल तक वो हृदय में अपनी इच्छा को रख रख के विचार करके करके अभी उन्होंने उसको मूर्त स्वरूप भी दिया है, अपने जीवन की सारी पूंजी लगा दिया उसके अंदर। नोबडी कैन डोनेट सो मच मनी, इतना अकेले ने किया उसके अंदर। अब अभी भी 250 करोड़ का घाटा है उसके अंदर, अभी भी चल रहा है काम, लेकिन भगवान की इच्छा है वो। हाँ, भगवान का काम है, वो पूरा होना ही है, कोई दो या मत दो, वो तो काम पूरा होना ही है। जो दे रहे हैं उसको भाग्य मिलेगा, जो नहीं दिया वो दुर्भाग्य है, उसका धन भी बेकार, उसका जीवन भी बेकार है। वैसे ही ये जो पृथ्वी ते आचे सर्व नगर आदि ग्राम, जो ये श्लोक है ना, ये सत्य होने वाला है, आप मानो या ना मानो, आपकी श्रद्धा हो या ना हो, ये होगा ही होगा। आपका भाग्य क्या है, अगर आपने उसमें हाथ बटाया तो आपका भी नाम होगा कि हमने भी वसई में हाथ बटाया और इतने लोग भक्त बने, है ना, जो माया के चक्र में थे, दुख भोग रहे थे, उनको भक्ति में लाने के लिए हमने भी कुछ किया, तो लाभ आपको मिलेगा। वो तो होना ही है, आप नहीं करेंगे तो और कोई करेगा, किसी से और से करवाएंगे भगवान, क्यों नहीं हम करें, क्यों नहीं हम लोग उसमें भाग दे अपना सहभाग, कॉन्ट्रीब्यूशन, और क्यों नहीं हम वो, जैसे भगवान बोलते ना, निमित्त मात्र भव सव्य साची। अरे अर्जुन, सब लोग मर चुके हैं, युद्ध का निर्णय भी हो चुका है, मैच फिक्सिंग ऑलरेडी हो गया है, आप लड़ो खाली, गौरव आपका होगा, यू विल बी द विक्टोरियस पर्सन, मेरा नाम नहीं आएगा कि मैं जीत गया, तुम जीत जाओगे, तुम राजा बनोगे, राज्याभिषेक तुम्हारे भाई का, तुम सब लोगों का होगा, निमित्त बनकर लड़ो, वॉर ऑलरेडी फिक्स हो गया है सब कुछ। उस तरह से आप लोगों को और हम लोगों को मौका है, ये नहीं करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो बढ़ते जाएगा कारवां, रुकने वाला नहीं किसी के लिए। हमारा जीवन है, अभी चल रहा है, इस समय सांस ले रहे हैं हम लोग जीवन में, उस समय ये हो रहा है, तो हमारा भाग्य है कि हमको मौका मिलेगा, हम लग जाओ उसके अंदर, पार हो जाओ साथ में उसके, कुछ भी नहीं होगा तो हमारा उद्धार तो हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, केवल हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारे साथ में बहुत लोगों का होगा, और वो हम भी नहीं करेंगे, हम कल निमित्त बनेंगे, बजेंगे डमरू की तरह, और वो करेंगे सबका उद्धार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम राम हरे हरे। सो